आगे सबक देखिए भाई। किताबुल हुदूद قال الحد لغة هو المنع ومنه الحداد للبواب وفي الشريعة هو العقوبة المقدرة حقا لله تعالى حتى لا يسمى القصاص حدا لأنه حق العبد ولا التعزير لعدم التقدير والمقصد الأصلي من شرعه الانزجار عما يتضرر به العباد والطهارة ليست أصلية فيه بدليل شرعه في حق الكافر। भाई गुज़श्ता सबक में हमने बाबुल यमीन फिल कत्ल वज़्ज़र्ब वगैरह पढ़ा था भाई। साहिब हिदाया ने आपको बतलाया कि अगर एक शख्स ये कसम खा लेता है कि अगर मैंने फुला की पिटाई की तो मेरा गुलाम आजाद है, तो इस सूरत में ये कसम उस शख्स की जिंदगी पर महमूल होगी, यानी जिसकी पिटाई को इसने जिक्र किया है। वजह यह कि पिटाई उस फेल को कहते हैं जो बदन से मुताल्लिक हो और जिसकी वजह से बदन को तकलीफ हो, और ये तकलीफ जो है ये तो सिर्फ जिंदा को हो सकती है, मुर्दा को नहीं, लिहाजा ये कसम भी महमूल होगी उस शख्स की जिंदगी पर। मैंने आपको बतलाया था कि अगर कसम खाने वाला किसी ऐसे फेल की कसम खाए जो जिंदगी के साथ खास हो, मसलन लज्जत है या खुशी है या गम है या तकलीफ देना वगैरह, तो फिर इस सूरत में यह कसम जिंदगी पर महमूल होगी। और अगर कसम खाने वाले ने किसी ऐसी बात पर कसम उठाई कि जो जिंदा और मुर्दा दोनों के दरमियान मुश्तरक है, तो फिर इस सूरत में यह कसम जिंदा को भी शामिल होगी और मुर्दा को भी। जैसे उसकी मिसाल कल के सबक में आई थी कि एक शख्स ने कसम उठाई कि मैं फुलां को गुसल नहीं दूंगा, तो फिर इस सूरत में चाहे जिंदा को गुसल दे चाहे मुर्दा को गुसल दे, दोनों सूरतों में यह हानिस हो जाएगा भाई। और यह भी मसाला साहिब हिदाया ने आपको बतलाया कि अगर एक शख्स ने कसम उठाई कि वो अपनी बीवी की पिटाई नहीं करेगा और फिर इसने उसके बाल खींचे या उसका गला दबाया या उसको दांतों से काटा, तो फिर इस सूरत में यह हानिस हो जाएगा। जबकि बाज़ फुकहा फरमाते हैं कि अगर ये उसने हंसी मजाक के साथ ये फेल किए हैं तो फिर हानिस नहीं होगा भाई, और उलमा ने इस कौल को तरजीह दी है भाई। और इसी तरह एक शख्स ने अगर कसम उठाई कि अगर मैं फुलां को कत्ल न करूं तो मेरी बीवी को तलाक है, और हाल यह है कि फुलां मर चुका है और इसको भी पता है कि वो मर चुका है, तो इस सूरत में कहते हैं ये कसम मुनाकिद हो गई और फिर फौरन ही ये हानिस भी हो गया और इसकी बीवी को तलाक हो गई। वजह यह कि इसको भी इलम है कि वह फुलां मर चुका है, लेकिन फिर भी यह कसम मुमकिन है बाई तौर कि अल्लाह ताला उस शख्स को दोबारा जिंदा फरमा दें, तो मालूम हुआ यह कसम फीजाती ही मुमकिन है। अलबत्ता आदतन यह महाल है, इसलिए फौरन यह हानिस हो जाएगा, कसम मुनाकिद हो जाएगी क्योंकि फीजाती ही यह मुमकिन है, और फिर यह फौरन हानिस हो जाएगा क्योंकि आदतन ऐसा महाल है भाई। और अगर उस शख्स को यह इलम नहीं था कि वो मर चुका है तो फिर इस सूरत के अंदर यह हानिस नहीं होगा क्योंकि कसम ही मुनाकिद नहीं हुई तरफैन के नजदीक, क्योंकि तरफैन के नजदीक कसम के मुनाकिद होने के लिए उसका पूरा करना मुमकिन होना चाहिए, फिर ही कसम मुनाकिद होती है, वैसे मुनाकिद नहीं होती। और जब वो शख्स मर चुका है और इसे इलम नहीं है और यह कहता है कि अगर मैंने फलां को कत्ल न किया तो मेरी बीवी को तलाक है, तो अब ऐसे कत्ल का तसव्वुर ही नहीं किया जा सकता क्योंकि इस सूरत में इसने उसकी पहली जिंदगी पर कसम खाई है और वो तो खत्म हो चुकी है, लिहाजा इसकी कसम मुमकिन ही नहीं है। हत्ता कि अगर अल्लाह ताला भी उसको दोबारा जिंदा फरमा दें तो ये तो दूसरी जिंदगी है, वो जो पहली जिंदगी थी वो जिंदगी तो नहीं है भाई। और फिर उसके बाद हमने बाबुल यमीनी फी तकाजी दराहिम पढ़ा भाई। साहिब हिदाया ने आपको बतलाया कि अगर कोई शख्स ये कसम खा ले कि मैं फुलां का देन करीबी जमाने में अदा करूंगा तो ये कसम एक महीने से कम पर महमूल होगी, एक महीने से कम में अदा कर देगा तो कसम पूरी हो गई, और अगर महीना पूरा हो गया तो फिर इस सूरत में ये शख्स हानिस हो जाएगा। और अगर किसी शख्स ने कसम उठाई कि मैं वल्लाह फुलां का देन देर से अदा करूंगा تو یہ قسم جو ہے مہینے یا مہینے سے زیادہ پر محمول ہوگی، لہذا مہینے سے پہلے اگر اس نے ادا کر دیا تو یہ خانص ہو جائے گا بھائی. اور اسی طرح ایک شخص نے قسم اٹھائی کہ واللہ میں آج فلاں کا دین ضرور ادا کروں گا، پھر اس نے کچھ درہم ادا کر دیے، وہ درہم ضیوف تھے یعنی ان میں کچھ کھوٹ زیادہ تھا، یا نبہرجا تھے یعنی ضیوف سے بھی بڑھ کر ان میں کھوٹ تھا، یا وہ درہم کسی اور کے تھے، تو ان تمام صورتوں میں اس نے اپنی قسم پوری کر لی، کیونکہ بے شک وہ درہم ضیوف ہیں لیکن کہلاتے تو درہم ہی ہیں، یا بے شک وہ درہم جو ہے نبہرجا ہیں لیکن کہلاتے تو درہم ہی ہیں، اور بے شک وہ درہم کسی اور کے ہیں لیکن ہیں تو درہم، اور اس نے قسم کھائی تھی ادائیگی کی تو اس نے بھی ان دراہم کو ادا کر دیا ہے، جب ادا کر دیا تو قسم پوری ہو گئی. لہذا اب وہ شخص جس نے ان درہموں پر قبضہ کیا تھا یعنی وہ جو قرض خواہ تھا، اس نے بعد میں دیکھا کہ یہ ضیوف ہیں یا نبہرجا ہیں یا کسی اور کے ہیں، اور اس نے وہ درہم واپس کر دیے، تو قسم ایک دفعہ پوری ہو چکی ہے تو اس کے واپس کرنے سے وہ قسم کا پورا کرنا کوئی فسخ نہیں ہوگا، وہ ختم نہیں ہوگا بھائی. اور اگر قرض خواہ نے وصول ہونے کے بعد دیکھا تو وہ تو رساس تھے، یعنی رساس میں نے بتایا ایک دھات ہے جس سے برتن وغیرہ بنائے جاتے ہیں، اور یا اس نے دیکھا کہ یہ درہم تو ستوکا ہے بھائی، میں نے بتایا ستوکا وہ درہم ہے جو پیتل یا تانبے کا ہوتا ہے اور اوپر چاندی کی تہ چڑھا دی جاتی ہے، تو رساس اور ستوکا یہ تو درہم ہیں ہی نہیں بھائی، لہذا اس صورت میں ادائیگی نہیں ہوئی، جب ادائیگی نہیں ہوئی تو یہ خانص ہو گیا بھائی. اور اگر اس نے اپنا غلام اس آدمی کو بیچ دیا ادائیگی کے طور پر اور پھر مقاصہ کر لیا دین کا، تو اس صورت میں بھی ادائیگی ہو جائے گی، لیکن اس میں شرط ہے کہ وہ شخص غلام پر قبضہ کر لے، اس لیے کیونکہ جب وہ قبضہ کرے گا تو اس پر بھی دین پکا ہو جائے گا. اس وقت تو مقروض پر دین پکا ثابت ہے، اور جب قرض خواہ نے اس کا غلام خرید لیا تو اس پر غلام کے جو سمن تھے وہ ثابت ہو گئے، لیکن وہ سمن جب تک وہ غلام پر قبضہ نہیں کرے گا وہ پکے ثابت نہیں ہیں، وہ ساقط بھی ہو سکتے ہیں، کیونکہ ہو سکتا ہے یہ غلام اس کے حوالے کرنے سے پہلے ہی مقروض کے پاس مر جائے، تو اس صورت میں تو اس پر دین ثابت نہیں ہوگا، جب دین ثابت نہیں ہوگا تو مقاصہ نہ ہو سکے گا، لہذا وہ غلام پر قبضہ بھی کر لے تو پھر اس صورت میں مقاصہ ہو جائے گا اور یہ اپنی قسم پوری کرنے والا ہو گیا. لیکن اگر قرض خواہ نے وہ قرضہ معاف کر دیا تو کہتے ہیں پھر اس صورت میں یہ قسم پوری کرنے والا نہیں، اور نیز خانص بھی نہیں ہوا، کیونکہ اب قرض کی ادائیگی کی صورت ہی نہ رہی. اس نے تو کیا کہا تھا، آج اگر میں نے قرض ادا نہ کیا، اب جب قرض ہی ختم ہو گیا تو ادائیگی ہو ہی نہیں سکتی بھائی، تو لہذا اس نے قسم پوری بھی نہیں کی اور خانص بھی نہیں ہوا، کیونکہ یمین ہی باطل ہو گئی، کیونکہ جب یمین کو پورا کرنا ممکن ہی نہ رہے تو وہ باطل ہو جاتی ہے. تو یہ بھی اس کوزے والے مسئلے کی مثل ہو گیا، کیونکہ ابھی دن باقی ہے اور اسے پہلے ہی یمین کا پورا کرنا ناممکن ہو گیا. جیسے کوزے والے مسئلے میں وہ قسم کھاتا تھا کہ آج میں اس کوزے کا پانی ضرور پیوں گا اور پانی موجود ہے، اور شام سے پہلے کس نے وہ پانی گرا دیا، تو اب دن کے آخر میں اس قسم کا پورا کرنا ممکن ہی نہ رہا، لہذا وہاں پر وہ قسم ختم ہو جائے گی، باطل ہو جائے گی. تو یہاں پر بھی اس نے قسم کھائی تھی کہ آج میں اپنا دین ضرور ادا کروں گا، تو یہاں پر بھی جب اس شخص نے دین معاف کر دیا تو دن کے آخر حصے میں دین کی ادائیگی ممکن ہی نہ رہی، تو لہذا یمین ختم ہو گئی. تو اس نے قسم پوری بھی نہیں کی کیونکہ ادائیگی نہیں کی، اور خانص بھی نہیں ہوا کیونکہ یمین ہی باطل ہو گئی، ختم ہو گئی. صورت سمجھ میں آ گئی. اس کے بعد ایک شخص نے قسم اٹھائی کہ واللہ میں اپنا دین متفرق طور پر وصول نہیں کروں گا، اور پھر کچھ دین متفرق طور پر وصول کر لیا، تو کہتے ہیں یہ خانص نہیں ہے جب تک یہ سارا دین متفرق طور پر وصول نہ کر لے، اس لیے کیونکہ اس نے کیا کہا تھا کہ میں اپنا دین متفرق طور پر وصول نہیں کروں گا، اور تو اس صورت میں اس نے دین کی اپنی طرف نسبت کی ہے تو وہ سارا اس کا دین مراد ہوگا. تو اس میں اب دو شرطیں ہیں، ایک تو یہ کہ وہ سارا دین وصول کرے اور دوسرا یہ کہ وہ متفرق طور پر ہو، تو پھر یہ خانص ہوگا. تو اگر کچھ دین اس نے متفرق طور پر وصول کیا ہے تو جب تک پورا دین وصول نہیں اس وقت تک یہ خانص بھی نہیں ہے. اور اگر اس نے اپنے دین پر اس طرح قبضہ کیا کہ ان کو دو یا تین مرتبہ الگ تول کر وصول کیا، तो कहते हैं इसको तफरीक नहीं कहते, क्योंकि दिरहम दीनार जो है इनको बाज़ औकात वजन करना पड़ता है और एक ही मरतबा सबका वजन मुमकिन नहीं रहता। तो फिर लिहाजा इस सूरत में अगर किसी और काम में दरमियान में मशगूल न हुए तो फिर इसको तफरीक नहीं कहेंगे, और अगर वजन करने के दरमियान किसी और काम में मशगूल हुए तो इसको तफरीक कहेंगे और इस सूरत में यह खानिस हो जाएगा भाई। और फिर साहिबे हिदाया ने मसला जिक्र फरमाया कि अगर मेरे लिए 100 दिरहम के अलावा हुए तो मेरी बीवी को तलाक है, और फिर जब देखा गया तो उसके पास सिर्फ 50 दिरहम थे। तो अल्फाज को देखें तो अल्फाज तकाजा करते हैं कि इसको हानिस होना चाहिए, इसलिए क्योंकि इसने क्या कहा है, मेरे पास अगर 100 दिरहम के अलावा कुछ हुआ, मालूम 100 दिरहम तो जरूर हैं, उससे जायद नहीं है, तो इसके पास 100 दिरहम का होना जरूरी है कसम के पूरा होने के लिए, लेकिन देखा गया तो इसके पास तो सिर्फ 50 दिरहम है भाई। तो अल्फाज को देखें तो हानिस होना चाहिए, लेकिन कहते हैं हानिस नहीं होगा उर्फ की वजह से, क्योंकि उर्फ के अंदर जब इस तरह का कलाम किया जाता है तो उसका मकसद यह होता है कि मेरे पास इससे ज्यादा माल नहीं है, इसका यह मतलब नहीं होता इतना पूरा माल है मेरे पास, बल्कि मतलब होता है इससे ज्यादा माल मेरे पास नहीं है, इतना है या इससे कम है भाई, तो लिहाजा ये हानिस नहीं होगा। और नीस जब इसने 100 का इस्तेसना किया तो 100 का इस्तेसना हो गया उसके सारे अज्जा के साथ भाई, और 50 भी क्या है 100 के अज्जा में से है भाई, लिहाजा जब 100 का इस्तेसना हुआ तो 100 के अज्जा का भी इस्तेसना हो गया भाई। और फिर साहिबे हिदाया ने मसला बतलाया कि अगर कोई शख्स किसी काम को न करने की कसम खाए तो फिर उस काम को हमेशा के लिए छोड़ना होगा, अगर एक दफा भी उसको करेगा तो हानिस हो जाएगा, और अगर किसी काम के करने की कसम उठाई तो यह सिर्फ एक दफा करने पर महमूल है, एक दफा भी वो काम कर लेगा तो इसकी कसम पूरी हो जाएगी भाई। और फिर साहिबे हिदाया ने बतलाया किसी शहर के वाली ने कुछ लोगों से कसम ली कि कोई भी शहर में फसाद फैलाने वाला दाखिल हो तो तुम मुझे इत्तला दोगे, और इन्होंने कसम उठा ली, तो ये कसम किस हालत पर महमूल होगी, तो बतलाया जब तक ये वाली मौजूद है, जब तक इसके पास ये ओहदा है तो उस हालत पर ये कसम महमूल होगी, और अगर वो वाली मर गया या उसको माजूल कर दिया गया तो अब वो कसम भी बातिल हो जाएगी, क्योंकि अब इत्तला देने का कोई फायदा ही नहीं है भाई। और इसी तरह एक शख्स ने कसम उठाई कि वल्लाह मैं अपना गुलाम फुलां को हिबा करूंगा, फिर इसने उसको हिबा किया लेकिन उसने कबूल नहीं किया, तो कहते हैं फिर भी इसकी कसम पूरी हो गई, फिर भी इसकी कसम पूरी हो गई भाई, जबकि इमाम जुफर फरमाते हैं कि नहीं, जब तक वो कबूल नहीं करेगा ये हिबा करने वाला नहीं, वो हिबा को कियास करते हैं बै पर, हिबा भी तमलीक का नाम है दूसरे को मालिक बनाना, और बै भी तमलीक का नाम है, तो जैसे बै के अंदर कबूल जरूरी होता है इसी तरह हिबा के अंदर भी कबूल जरूरी है, लेकिन हम कहते हैं नहीं, बै जो है वो आकदे मुआवजा है, इसलिए वहां जानिबैन से फेल चाहिए, जबकि हिबा जो है वो आकदे तबर्रुअ है, वो सिर्फ मुतबर्रअ पर पूरा हो जाता है, हत्ता कि अगर कोई शख्स किसी को हिबा करे और दूसरा कबूल न करे फिर भी अरबी में कहते हैं वहबा वलम यकबल, कि इसने हिबा किया और दूसरे ने कबूल नहीं किया, तो इसको फिर भी हिबा कहा जाता है भाई। और नीज इसलिए क्योंकि हिबा के जरिए अपनी सखावत का इजहार मकसूद होता है, तो जब ये मुतबर्रअ हिबा कर रहा है तो इसकी सखावत का इजहार हो गया, लिहाजा अब उसमें दूसरे के कबूल की जरूरत नहीं है भाई, बात समझ में आ गई। और इसी तरह साहिबे हिदाया ने बतलाया कि किसी शख्स ने अगर कसम उठाई कि वो रेहान नहीं सूंघेगा और उसने फिर गुलाब या चंबेली को सूंघा तो वो हानिस नहीं होगा, और अगर किसी ने बनफशा की कसम खाई कि मैं बनफशा नहीं खरीदूंगा तो ये कसम बनफशा के तेल पर महमूल होगी भाई, क्योंकि उर्फ में इससे बनफशा का तेल मुराद लिया जाता है। मैंने बताया इसका दारोमदार उर्फ पर है, हर इलाके का अपना उर्फ होता है तो उसके मुताबिक ही इसको देखा जाएगा। अब आइए आज के सबक पर। किताबुल हुदूद قال الحد لغة هو المنع ومنه الحداد للبواب وفي الشريعة هو العقوبة المقدرة حقا لله تعالى। भाई याद रखो शरीयत में सजाएं जो हैं वो दो किस्म की हैं, काजी जो सजा देता है मुजरिमों को वो दो किस्म की सजाएं हैं भाई, کچھ کو حدود کہتے ہیں اور کچھ کو تعزیر کہتے ہیں. عزرا یعزر تعزیرن بھائی. تو قاضی جو سزائیں دیتا ہے, یوں کہیں شریعت میں جو سزائیں ہیں وہ دو قسم کی ہیں, کچھ کو حدود کہتے ہیں اور کچھ کو تعزیر کہتے ہیں. یاد رکھو حدود وہ سزائیں ہیں جو اللہ کی طرف سے باقاعدہ مقرر ہیں. جیسے چوری کی سزا یہ ہے کہ چور کا ہاتھ کاٹا جاتا ہے, جیسے غیر شادی شدہ اگر زنا کر لے تو اس کی سزا یہ ہے کہ اسے 100 کوڑے لگائے جاتے ہیں, مرد اور عورت کو 100 100 کوڑے لگائے جاتے ہیں. اسی طرح اگر کوئی شخص کسی پر تہمت لگا دے زنا کی تو اس کو 80 کوڑے لگائے جاتے ہیں. اسی طرح اگر کوئی شخص ڈاکہ ڈالتا ہے تو اس صورت میں اس کا ایک ہاتھ اور مخالف سمت کا پاؤں کاٹا جاتا ہے. تو یہ ہے حدود بھائی, یہ اللہ کی طرف سے یہ سزائیں مقرر ہیں بھائی. اور جبکہ باقی سزائیں جو ہیں وہ قاضی کی ثواب دید پر ہیں, قاضی اپنی مرضی سے وہ سزائیں دیتا ہے, کسی کو کم دے کسی کو زیادہ دے, اس میں قاضی کی مرضی ہے. وہ باقی سزائیں اللہ کی طرف سے مقرر نہیں. تو حدود کے علاوہ جو باقی سزائیں ہیں ان کو تعزیر کہا جاتا ہے. اور یاد رکھو یہ جو حدود ہیں یہ کل 6 ہیں بھائی, حدود 6 ہیں بھائی, 6 سزائیں ہیں جن کو حدود کہا جاتا ہے. 6 سزائیں ہیں. نمبر 1 حد زنا بھائی, شادی شدہ اگر زنا کرے گا تو اسے رجم کیا جائے گا, اسے سنگسار کیا جائے گا, پتھر مار مار کر اسے قتل کر دیا جائے گا. اور اگر غیر شادی شدہ زنا کرے تو اسے 100 کوڑے لگائے جائیں گے. یہ ہے حد زنا. دوسری ہے حد شرب خمر, شراب پینے کی حد. یاد رکھو جو بھی شراب پیے گا اس کو 80 کوڑے لگائے جائیں گے, اس کو 80 کوڑے لگائے جائیں گے. جبکہ بعض روایات میں ہے کہ حد شرب خمر ابتدا میں 40 کوڑے تھے اور بعد میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں اسے 80 کوڑے کر دیا گیا, اور اس پر تمام صحابہ کا اتفاق ہو گیا, اجماع ہو گیا. تو حد شرب خمر جو ہے یہ 80 کوڑے ہیں بھائی. جبکہ غلام کی سزا آزاد کے مقابلے میں نصف ہوتی ہے تو غلام کو 40 کوڑے لگیں گے بھائی حد شرب خمر کے طور پر. تو پہلی جو ہے وہ حد زنا ہے, دوسری جو ہے حد شرب خمر ہے, تیسری ہے حد سکر من غیر الخمر. حد سکر, سین کافرا, چھوٹا کاف ہے, سین کافرا, سکر کہتے ہیں نشے کو. حد سکر من غیر الخمر, شراب کے علاوہ کوئی اور نشاور مشروب استعمال کرنا جس سے نشہ ہو جائے, تو اس صورت میں بھی 80 کوڑے سزا ہے بھائی. تو شراب پینے کی حد الگ ہے. شراب کے اندر یاد رکھو, شراب کے اندر نشے کی بھی شرط نہیں ہے. کوئی شخص ایک قطرہ شراب کا بھی پی لے گا اور قاضی کے پاس یہ بات ثابت ہو جائے تو اس پر حد شرب خمر جاری ہوگی. جبکہ اور نشاور مشروب پیے گا تو اس میں نشے کو دیکھا جائے گا, اگر نشہ ہوا تو وہ حد آئے گی, اگر نشہ نہیں تو وہ حد بھی نہیں آئے گی بھائی. تو ایک حد کیا ہے, حد زنا, دوسری حد شرب خمر, تیسری حد سکر من غیر الخمر, خمر کے علاوہ کسی اور چیز سے نشہ ہو, اور چوتھی حد ہے حد قذف بھائی, کسی پر زنا کی تہمت لگائی تو اس کو بھی 80 کوڑے لگائے جائیں گے, اور عند الاحناف اس کی آئندہ کبھی گواہی قبول نہیں کی جائے گی. کیونکہ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں فلا تقبلوا لهم شهادتا ابدا, کہ ان کی کبھی بھی گواہی قبول نہ کرو. عند الاحناف یہ بھی حد کا حصہ ہے بھائی. اور پانچویں حد ہے حد سرقہ بھائی, چوری کی حد, کہ چوری کرنے والے کا ہاتھ کاٹ دیا جاتا ہے بھائی. اور چھٹی حد جو ہے حد قطع طریق ہے. حد قطع طریق, قطع ان کا معنی ہے کاٹنا, طریق راستے کو کہتے ہیں, قطع طریق راستہ کاٹنا, مراد ڈاکہ ہے بھائی. تو ڈاکے کی سزا یہ ہے کہ ڈاکہ ڈالنے والے کا ایک ہاتھ کاٹا جاتا ہے اور اس کے دوسری جانب کا پاؤں کاٹا جاتا ہے. تو ایک ہی جانب کے ہاتھ اور پاؤں نہیں کاٹے جاتے, ورنہ تو اس شخص کے لیے چلنا ہی ناممکن ہو جائے گا. एक तरफ का पांव कटा है तो उस तरफ का हाथ तो सलामत होगा, तो उस तरफ लाठी पकड़कर चल लेगा, लेकिन अगर उसी तरफ का हाथ भी काट दिया जाए फिर तो ये उस तरफ लाठी भी पकड़कर नहीं चल सकता भाई। तो ये कुल छह हुदूद हैं, हद्दे जिना, हद्दे शुरबे खमर, हद्दे सुकर मिन गैरिल खमर, हद्दे कजफ और हद सरिका और हद कतई तरीक भाई। तो ये छह हुदूद हैं, ये अल्लाह की तरफ से मुकरर हैं, जबकि इनके अलावा बाकी जो सजाएं हैं वो ताजीर कहलाती हैं भाई। याद रखो ये हुदूद जमा है हद की, किताबुल हुदूद भाई, ये हुदूद जमा है हद की, और अरबी जुबान में हद का माना है रोकना, मना करना। साहिब हिदायत भी आपको बतलाएंगे भाई, हद का माना है रोकना और मना करना। चुनांचे कहते हैं जब कोई शख्स किसी चीज को रोके तो अरबी में कहते हैं हदतु शैआ, हदतु शैआ, मैंने उस चीज को रोक दिया। इसी तरह जमीन की मिल्कियत को भी हुदूद कहते हैं, किसी शख्स की जमीन होती है वो उसकी हुदूद बयान करता है कि यहां से यहां तक है भाई। तो ये जमीन के हुदूद को भी हुदूद इसलिए कहते हैं कि ये मान्या होती हैं दुखूल गैर से, वो हद मान्या होती है दुखूल गैर से, या इसलिए इनको हुदूद कहते हैं कि ये मान्या होती हैं दो मिल्कियतों के आपस में मिलने से, दो मिल्कियतों के आपस में मिलने से ये मान्या होती हैं। एक शख्स की जमीन की एक हद है, उससे आगे दूसरे की जमीन शुरू हो रही है, तो ये जो हद है ये रोक रही है दोनों की जमीनों को आपस में मिलने से। तो हद का माना है रोकना भाई, रोकना भाई। और ये शरई हुदूद को शरई हुदूद क्यों कहते हैं, तो उसकी वजह यह है कि ये हुदूद भी मान्या हैं मुजरिम के लिए भी और लोगों के लिए भी। ये शरई हुदूद मान्या हैं मुजरिम के लिए भी और लोगों के लिए भी, बतौर इबरत ये मान्या बन जाएगी और लोग उस सजा के खौफ से वो जुर्म नहीं करेंगे। तो शरई हुदूद इन जराइम से लोगों को रोकने वाली हैं, इसलिए उनको हुदूद कहा जाता है। और याद रखो साहिब हिदाया हद की तारीफ करेंगे, हद किसे कहते हैं, और आपको बतलाएंगे हुवल उकूबतुल मुकद्दरतु हक्कन लिल्लाह ताला, कि हद वो सजा है जो बतौर अल्लाह के हक के मुकर्रर हो जी। हद वो सजा है, हुवल उकूबत, उकूबत सजा को कहते हैं, कि हद वो सजा है अल मुकद्दरतु जो मुकर्रर हो हक्कन लिल्लाह ताला, अल्लाह के हक के तौर पर। तो हद के अंदर दो चीजें होती हैं, एक तो यह कि उसकी मकदार मुकर्रर है अल्लाह की तरफ से, और दूसरा यह कि यह अल्लाह का हक है, यह बंदों का हक नहीं है भाई। तो दो चीजें हैं हद के अंदर, एक तो यह कि अल्लाह की तरफ से मुकर्रर है, तो लिहाजा हद में किसी किस्म की कमी बेशी नहीं हो सकती, काजी या हाकिम के लिए भी किसी किस्म की इसमें कमी करना हराम है, क्योंकि यह अल्लाह की तरफ से मुकर्रर है भाई। और नीज दूसरी बात यह जिक्र हुई तारीफ के अंदर कि यह अल्लाह का हक है भाई, तो मालूम हुआ हद जो है यह हकुल्ला है, इसलिए हुदूद में सफारिश भी जायज नहीं है भाई, हत्ता कि खुद साहिब हक भी हद माफ नहीं कर सकता जब हाकिम तक बात पहुंच जाए। जब हाकिम तक बात पहुंच जाए तो फिर हद के अंदर कोई सफारिश नहीं की जा सकती, हत्ता के साहिब हक भी माफ नहीं कर सकता। मसलन एक शख्स ने चोरी की और वो मालिक ने बाद में इसको पकड़ लिया भाई, और इसने भी चोरी का इकरार कर लिया, और फिर ये मसला काजी के पास पहुंच गया, काजी के पास ले गए उसको, तो काजी ने जब चोरी साबित हो गई, गवाह आ गए, तो फिर काजी ने उसके हाथ काटने का फैसला कर दिया। अब वो जो मालिक था उसको तरस आने लगा कि अब इस बेचारे का हाथ काटा जाएगा, तो वो अब काजी से सफारिश करता है कि आप इसकी सजा में कमी कर दें। तो याद रखो कोई अब इसकी सजा में कमी नहीं कर सकता। या वो शख्स कहता है कि काजी साहब बस मैं इसको माफ करता हूं, आप इसको माफ कर दें, तो नहीं, याद रखो ये अब इसको कोई माफ नहीं कर सकता, ये अल्लाह का हक है। तो काजी उससे कहेगा कि भाई अगर आपने माफ करना था तो मेरे पास मामला लाने से पहले ही इसको वहीं माफ कर देते। अब जब मेरे पास मामला आ गया है, अब मेरा भी कोई इख्तियार नहीं है, मुझे यह सजा नाफिज करना पड़ेगी, क्योंकि यह अल्लाह का हक है, अल्लाह की तरफ से मुकर्रर है, मैं इसमें न कमी बेशी कर सकता हूं और न इसको माफ कर सकता हूं। और यह भी याद रखना, यह भी याद रखना कि हद का मामला निहायत नाजुक है। हद इंतहा दर्जे की सजाएं हैं भाई, बे इंतहा सख्त सजाएं हैं। देखो, चोरी करने वाले का हाथ काट दिया जाता है, जिना करने वाला अगर शादीशुदा है उसको रजम कर दिया जाता है, डाकू है तो उसका एक हाथ और एक पांव काट दिया जाता है। तो ये इंतहा दर्जे की सजाएं हैं, लिहाजा मामूली शुबे से भी हद साकित हो जाएगी। अदना शुबा भी आ गया हद के अंदर तो हद साकित हो जाएगी भाई, बखिलाफ ताजीर के वो शुबे की वजह से साकित नहीं होती भाई। तो हद जो है अदना शुबे से भी साकित हो जाती है। चुनांचे उलमा फरमाते हैं, अलहुदूदु तंदरीउ बिशुबहात, अलहुदूदु तंदरीउ, इंदरा अंदरीउ के माने मिट जाना, खत्म हो जाना, अलहुदूदु तंदरीउ बिशुबहाती, कि हुदूद जो है वो शुबों की वजह से साकित हो जाती हैं, खत्म हो जाती हैं। तो जरा भी शुबा आ गया तो हद साकित हो जाएगी भाई। और फिर इसमें यह भी याद रखें कि हद चूंकि इंतहा दर्जे की सजाएं हैं तो ताजीर जो है, ताजीर जो है वो हद से कम होनी चाहिए। ताजीर हद के बराबर या हद से ज्यादा नहीं बल्कि हद से कम होनी चाहिए। और हद तो कम से कम 40 कोड़े हैं, जैसे हद शुरबे खमर भाई। मैंने आपको बतलाया कि बाज रिवायात में आता है कि इब्तिदा में हद खमर 40 कोड़े थी, या इसी तरह गुलाम को जो हद शुरबे खमर लगाई जाएगी वो निसफ होगी तो वो भी 40 कोड़े है। तो ताजीर को हद से कम होना चाहिए, लिहाजा ताजीर ज्यादा से ज्यादा 39 कोड़े हो सकती है, हद से कम अज कम एक कोड़ा जरूर कम होगा भाई। तो ताजीर ज्यादा से ज्यादा 39 कोड़े होनी चाहिए भाई। अलबत्ता बाज औकात आम सजाओं से लोग नहीं रुकते, आम सजाओं से लोग नहीं रुकते, तो फिर सियासतन ताजीर बिल कत्ल भी जायज है कि काजी कत्ल की सजा दे दे। तो बाज औकात लोग एक जुर्म से बाज नहीं आते सजा मामूली होने की वजह से, तो काजी सियासतन ताजीर बिल कत्ल भी कर सकता है। मसलन मिलावट की सजा मामूली सी है, अब उस इलाके के लोग मिलावट से बाज ही नहीं आ रहे, बहुत समझाया लेकिन किसी तरह वो मिलावट से नहीं रुकते, तो काजी के लिए जायज है 2-3 आदमियों को कत्ल करवा दे जी। तो जब 2-3 को कत्ल की सजा मिलेगी तो सारे लोग खौफ की वजह से रुक जाएंगे भाई। तो ये सियासतन है भाई, तो सियासतन ताजीर बिल कत्ल भी जायज है भाई। अब देखिए भाई किताब पर, किताबुल हुदूद, ये हुदूद की किताब है। قال الحد لغة هو المنع، قال इस काला से मुराद साहिब हिदाया है भाई। قال الحد لغة هو المنع، साहिब हिदाया फरमाते हैं कि हद जो है अरबी जुबान के एतबार से इसका माना मना करना है। وَمِنْهُ الْحَدَّادُ لِلْبَوَّابِ، और इसी से हद्दाद भी है बवाब के लिए। बवाब जो है दरबान भाई, वो शख्स जो दरवाजे पर खड़ा होता है, दरबान है, चौकीदार है, और उसकी इजाजत के बगैर कोई अंदर नहीं आ सकता, तो इस दरबान को भी हद्दाद कहते हैं जी। हद्दाद कहते हैं क्योंकि ये भी लोगों को अंदर आने से मना करता है जी। तो कहते हैं वमीन हुल हद्दाद उलिल बवाबी, और इसी से बवाब के लिए हद्दाद का नाम है। वफी शरीयती, और शरीयत के अंदर हुअल उकूबतुल मुकद्दरतु हक्कन लिल्लाही ताला, के हद जो है वो सजा है। अल मुकद्दरतु हक्कन लिल्लाही ताला, जो बतौर अल्लाह के हक के मुकर्रर हो। तो दो चीजें हैं इसमें, कि सजा कि ये मुकर्रर है, और दूसरी कि ये अल्लाह का हक है। तो कहते हैं वह फी शरीयती हुअल उकूबतुल मुकद्दरतु हक्कन लिल्लाही ताला, और शरीयत के अंदर हद जो है वो सजा है जो बतौर अल्लाह के हक के मुकर्रर है। हत्ता ला युसम्मल किसासु हद्दन, यहां तक के किसास को हद नहीं कहते। लिअन्नहु हक्कुल अब्दी, क्योंकि वो बंदे का हक है। मैंने बतलाया दोनों चीजों का होना जरूरी है, एक तो यह कि अल्लाह का हक हो और दूसरा यह कि वह मुकर्रर हो। तो लिहाजा किसास निकल गया, क्योंकि किसास जो है वह अल्लाह का हक नहीं है बल्कि वह बंदे का हक है। चुनाचे इसीलिए मकतूल के औलिया कातिल को मुआफ भी कर सकते हैं और मकतूल के औलिया किसास के बजाय माल भी ले सकते हैं सुलह करके। तो मालूम हुआ किसास हकुल अब्द है भाई, तो किसास हद की तारीफ से निकल गया। और इसी तरह ताजीर भी निकल गई, ताजीर इसलिए क्योंकि ताजीर काजी की सवाबदीद पर है, उसकी कोई मिकदार मुकर्रर नहीं है भाई। तो कहते हैं हत्ता ला युसम्मल किसास हद्दन, यहां तक कि किसास को हद नहीं कहा जाता। लिअन्नहु हक्कुल अब्दी, इसलिए क्योंकि किसास जो है वो बंदे का हक है। वलत ताजीर, और इसी तरह ताजीर को भी हद नहीं कहते। लिअदमी तकदीरी, मुकर्रर न होने की वजह से, कि ताजीर की कोई मिकदार मुकर्रर नहीं है भाई। तो ये माने वाला ताजीर, और ताजीर को भी हद नहीं कहते। लिअदमी तकदीरी, मुकर्रर न होने की वजह से। वल मकसदुल असली मिन शरई लिंजिजार अम्मा यतजररु बिहिल इबाद। इंजिजार भाई, इंजजरा यंजिरु, इंजिजार का माना है रुकना, बाज आना, ये बाबे इन्फियाल है, जजर से, जजर से बाबे इन्फियाल है, और बाबे इन्फियाल लाजमी होता है। तो इंजिजार का यह माना नहीं दूसरे को रोकना, बल्कि इंजिजार का माना है खुद रुकना और बाज आ जाना। अब इसका मकसद क्या है इन हुदूद का, मैंने बतला दिया, ताकि मुजरिम और लोग जो हैं वो इन जराइम से बाज आ जाएं। कहते हैं वल मकसदुल असली मिन शरईही, और असली मकसद जो है इन हुदूद की मशरूईयत से, अल इंजिजारू, वो बाज आना है, वो रुकना है। अम्मा यतजररु बिहिल इबादु, उस चीज से जिसे लोगों को नुकसान होता है। अल इंजिजारू अम्मा यतजररु बिहिल इबादु, बाज आना उस चीज से जिससे लोगों को नुकसान होता है, चाहे लोगों की जान का नुकसान हो, चाहे माल का नुकसान हो, चाहे इज्जत का नुकसान हो जी। उन तमाम अफाल से रुकना जिससे लोगों को जानी माली या इज्जत का नुकसान पहुंच रहा हो भाई। जैसे देखो मसलन हद जिना की वजह से जान की हिफाजत होगी, औरतों की जान की हिफाजत होगी, या इसी तरह हद कसफ जो है किसी पर जिना की तोहमत लगाना, तो हद कजफ की वजह से लोगों की इज्जत की हिफाजत होगी, कोई किसी पर जिना का इल्जाम नहीं लगा सकेगा भाई कि कहीं मुझ पर हद कजफ ना जारी हो जाए भाई। और इसी तरह हद सरीका है, चोरी की हद है, उसकी वजह से लोगों के माल की हिफाजत होगी भाई। तो कहते हैं वल मकसदुल असली मिन शरईहि लिंजिजार अम्मा यतजररु बिहिल इबादु, और इस हद की मशरूईयत का असली मकसद जो है वो रुकना है उस फेल से जिससे लोगों को नुकसान होता हो। व तहारतु लैसत असलियतन फीहि बिदलील शरईहि फी हक़िल काफिरी। भाई साहिब हिदाया ने आपको बतला दिया कि यह हुदूद की मशरूईयत का असली मकसद यह है कि जुर्म करने वाला और बाकी लोग जो हैं वो इस किस्म के अफाल से बाज आ जाएं। मुजरिम को जब एक दफा सजा मिल गई वो दोबारा ऐसा नहीं करेगा, और नीज लोग उसकी हालत को देखकर इबरत पकड़ेंगे और कोई और भी ये जुर्म नहीं करेगा। तो ये है हुदूद का मकसद असली। जबकि बाज़ उलमा फरमाते हैं कि हुदूद का मकसद यह है कि वह आदमी उस गुनाह से पाक हो जाए। उस शख्स ने एक बड़ा गुनाह किया है, लिहाजा उस पर जब हद जारी होगी तो उसका गुनाह माफ हो जाएगा, आखिरत में अब उसका मुआखजा नहीं होगा क्योंकि उसको उसके जुर्म की सजा मिल चुकी है भाई। लेकिन साहिब हिदाया फरमा रहे हैं कि नहीं, यहां हुदूद के अंदर तहारत असल नहीं है, यानी मकसद असली तहारत नहीं है, बल्कि मकसद असली उस मुजरिम को और लोगों को जुर्म से रोकना है भाई। तो मकसद असली जो है वो गुनाह से पाकी नहीं है, और दलील इसकी जिक्र करेंगे साहिब हिदाया कि वजह यह कि यह हुदूद काफिर के हक में भी मशरू हैं, काफिर भी ये जुर्म करेगा तो उस पर भी ये हद जारी होगी, और काफिर के बारे में तो ये कोई नहीं कह सकता कि इसका गुनाह माफ हो गया, क्योंकि काफिर तो अपने कुफर में डूबा हुआ है, उसका कुफर उसके साथ जुड़ा हुआ है, तो हद उसके लिए कैसे गुनाह को खत्म करने वाली हो सकती है। तो काफिर के बारे में हम यह नहीं कह सकते कि हद जारी होने की वजह से उसका गुनाह खत्म हो गया। तो मालूम हुआ हद के अंदर मकसद असली वो लोगों को गुनाह से रोकना है, असल मकसद गुनाह से पाक करना नहीं है। हां अलबत्ता अगर उस जुर्म करने वाले ने जिस पर हद जारी हो रही है उसने सच्ची तौबा कर ली है तो फिर इस सूरत में यह हद उसको गुनाह से पाक करने वाली है, इस हद की वजह से उसका यह जुर्म मिट गया, खत्म हो गया। इस हद के जारी होने की वजह से इसका यह जुर्म मिट गया और खत्म हो गया भाई। और अगर वो तौबा नहीं करता तो फिर इस सूरत में यह हद उसको गुनाह से पाक करने वाली नहीं है भाई। तो साहिबे हिदाया फरमाते हैं वह तहारतुल लैसत असलियतन फीही, और तहारत यानी गुनाहों से पाकी जो है वो हद के अंदर असल नहीं है। बिदलील शरईही फी हकिल काफिरी, इस दलील से कि ये काफिर के हक में भी मशरू है, ये हद जो है काफिर के हक में भी मशरू है, काफिर को भी यही सजा दी जाती है। ये इस बात की दलील है कि हद के अंदर तहारत असल नहीं है, इसकी वजह से गुनाह माफ नहीं होगा, इल्ला ये कि वो शख्स तौबा कर ले। तो तौबा कर ले और हद जारी हो जाए तो फिर उसका गुनाह माफ हो गया, और अगर वो तौबा नहीं करता तो उसका गुनाह माफ नहीं है, तो फिर ये हद उसके लिए तहारत नहीं बनेगी उस गुनाह से भाई। बात समझ में आ गई। तो कहते हैं वह तहारतु लैसत असलियतन फीही, और तहारत इसके अंदर असल नहीं है। बिदलील शरईही फी हकिल काफिरी, इस दलील से के काफिर के हक में भी यह हद मशरू है। आगे देखिए काल जिना यसबुतु बिल बय्यिनति वल इकरार। तो अब हुदूद में से सबसे पहले जिना और उसकी हद बयान करने लगे हैं साहिब हिदाया भाई। काला, ये काला से मुराद साहिब कुदूरी हैं। काला साहिब कुदूरी फरमाते हैं अज़िना यसबुतु बिल बय्यिनति वल इकरारी, के जिना साबित हो जाता है बय्यिना और इकरार के जरिए। जिना साबित हो जाता है बय्यिना और इकरार के जरिए। मसलन चार गवाह काजी के पास आ गए और आकर उन्होंने गवाही दे दी कि फलां शख्स ने जिना किया है, तो देखो ये बय्यिना यानी गवाही के जरिए जिना साबित हो गया, अब उस शख्स पर हद जिना जारी की जाएगी। या वो शख्स खुद आकर इकरार कर लेता है कि मैंने ये गुनाह किया है, मुझ पर हद जारी कर दी जाए। तो मालूम हुआ जिना जो है वो बय्यिना और इकरार से साबित हो जाता है भाई। तो काल साहिब कुदूरी फरमाते हैं अज़िना यसबुतु बिल बय्यिनति वल इकरारी, के जिना साबित हो जाता है बय्यिना और इकरार के जरिए। वल मुरादु सुबूतुहु इंदल इमाम, साहिब हिदाया फरमा रहे हैं वल मुरादु, कि साहिब कुदूरी की मुराद यह है सुबूतुहु इंदल इमामी, यानी जिना का सुबूत जो है इमाम यानी हाकिम के पास हो जाता है बय्यिना और इकरार से। मतन में तो क्या आया अज़िना यसबुतु बिल बय्यिनति वल इकरारी, जिना साबित हो जाता है बय्यिना और इकरार से। कहते हैं इसका यह माना नहीं है कि जिना का वजूद आ जाता है बय्यिना और इकरार की वजह से। वजूद तो वो जानी और मजनिया का जो फेल था उसकी वजह से जिना तो साबित हो चुका है, अलबत्ता काजी के पास बय्यिना और इकरार के जरिए साबित हो जाता है। तवज्जो है, तो साबित होने से जिना का वजूद नहीं मुराद कि बय्यिना और इकरार से जिना का वजूद हो जाएगा, नहीं भाई, वजूद तो वो जानी और मजनिया का फेल था भाई, वो तो पहले ही हो चुका है। तो फिर साबित होने से क्या मुराद है कि जिना बय्यिना और इकरार से साबित होता है हाकिम के पास, काजी के पास भाई। वल मुरादु सुबूतुहु इंदल इमामी, और साहिब कुदूरी की जो मुराद है वो जिना का इमाम के पास साबित होना है। लिअन्नल बय्यिनत दलीलुन ज़ाहिरुन, इसलिए क्योंकि बय्यिना जो है वो जाहिरी दलील है। बय्यिना क्या है? जाहिरी दलील है। कुरान में अल्लाह फरमाते हैं, आगे साहिब हिदाया भी जिक्र करेंगे, फस्तशहिदु अलैहिन्न अरबअतम मिनकुम, तो उन पर अपने में से चार गवाह बना लो। तो बय्यिना जो है लिअन्नल बय्यिनता दलीलुन ज़ाहिरुन, इसलिए क्योंकि बय्यिना जो है वो जाहिरी दलील है। वकदल इकरारु, और इसी तरह इकरार भी दलील है भाई। लिअन्न सिद्क फीही मुरज्जहुन, भाई मेरी किताब में है मुरज्जह, भाई जीम के नीचे जेर है, ये किताबत की गलती है भाई, ये मुरज्जह होना चाहिए लफ्ज़ भाई, इसमें मफूल। लिअन्न सिद्क फीही मुरज्जहुन, इसलिए क्योंकि सच जो है इकरार के अंदर राजिह है। भाई एक आदमी काजी के पास आकर इकरार करता है कि मैंने जिना किया है, मुझ पर हद जारी कर दी जाए, तो इसके इकरार में सच का भी एहतमाल है, झूठ का भी एहतमाल है, लेकिन सच जो है राजिह है भाई, यहां पर सच को तरजीह है, खास तौर पर जब एक ऐसा मामला है जिसमें इस आदमी को बदनी नुकसान भी होगा और इसकी इज्जत को भी नुकसान होगा। बदनी नुकसान होगा, इस पर सजा जारी होगी, और इज्जत का भी नुकसान होगा कि लोगों के अंदर भी इसकी इज्जत खराब होगी कि इसने जुर्म किया है भाई। तो इकरार के अंदर दोनों इहतमाल हैं, सच का भी और झूठ का भी, लेकिन सच राजिह है झूठ के मुकाबले में। तो कहते हैं वकदल इकरारू, और इसी तरह इकरार जो है वो भी जाहिरी दलील है, लिअन्न सिद्क़ फीही मुरज्जहुन, इसलिए क्योंकि इकरार के अंदर सच जो है वो राजिह है, ला सियमा फीमा यतअल्लकु बिसुबूतिही मज़र्रतुन व मअर्रतुन, मज़र्रतुन ज़ाद के साथ है भाई, मज़र्रतुन कहते हैं नुकसान और तकलीफ को, जरर से है जरर, मजारतुन का क्या माना, नुकसान और तकलीफ, और मारतुन, मारतुन भी तकलीफ को कहते हैं, और इसी तरह ऐब को भी कहते हैं, तो मजारतुन का माना तकलीफ के कर लें और मारतुन का माना ऐब के कर लें भाई। तो कहते हैं लासी या माफी मा यताल्लक भी सबूत ही मजर्रतुन व मारतुन, खास तौर पर उस चीज के अंदर कि जिसके साबित होने के साथ बदनी नुकसान और इज्जत में ऐब साबित हो, खास तौर पर ऐसी चीज में कि उस चीज के साबित होने से बदनी नुकसान होता हो और इज्जत में भी, और इज्जत में भी ऐब लगता हो, तो खास तौर पर ऐसे मकाम पर इकरार के अंदर सच राजिह है भाई। फिर तर्जमा देख लीजिए, कहते हैं लासी या माफीमा यताअल्लक बिसुबूती ही मजर्रतुन व मारतुन, लासी या मा खास तौर पर, फीमा ऐसी चीज के अंदर, यताअल्लक बिसुबूती ही कि उसके साबित होने के साथ मुतअल्लिक हो, क्या मुतअल्लिक हो, मजर्रतुन व मारतुन तकलीफ और ऐब भाई। वल वसूल इलल इल्म अल कतई मुतअज़्ज़िरुन, और पहुंचना इलल इल्म अल कतई, कतई इल्म तक मुतअज़्ज़िरुन, वो तो मुतअज़्ज़िर है, मुमकिन नहीं है भाई। ज़िना हकीकत में जानी और मजनिया ने किया है या नहीं किया, हकीकत इल्म तक पहुंचना मुमकिन नहीं है, क्योंकि ज़िना छुपा कर किया जाता है, तो लिहाजा जाहिरी दलील पर ही इक्तिफा करना पड़ेगा, और जाहिरी दलील जो है वो गवाह है या इस आदमी का इकरार है भाई। तो ये माना है वल वसूल इलल इल्म अल कतई मुतअज़्ज़िरुन, और कतई इल्म तक पहुंचना मुमकिन नहीं है, फयुक्तफा बिज़ाहिरी, तो जाहिर पर ही इक्तिफा कर लिया जाएगा, यानी बय्यना या इकरार पर ही इक्तिफा कर लिया जाएगा। قال صاحب قدوري فرماتے ہیں فالبینۃ ان تشهد اربعۃ من الشهود على رجل وامرأۃ بالزنا۔ اب بینہ کا بیان شروع ہوا، یاد رکھو، یاد رکھو زنا کے معاملے میں چار گواہ ہونے چاہیے، چار گواہ۔ ایک اور قیمتی بات بھی یاد رکھنا، یاد رکھو میں نے آپ کو بتلایا حدود کا معاملہ بڑا نازک ہے، ادنا شبے سے بھی حد ساقط ہو جاتی ہے، تو یاد رکھنا हुदूद के मसले में औरतों की गवाही सिरे से कबूल ही नहीं है, हुदूद के अंदर सिर्फ आदिल मर्दों की गवाही ही कबूल की जाएगी, हुदूद के मसले में सिर्फ मर्दों की गवाही कबूल की जाएगी। قال صاحب قدوري فرماتے ہیں فالبینۃ ان تشهد اربعۃ من الشهود على رجل وامرأۃ بالزنا، کہ بینہ وہ یہ ہے کہ ان تشهد اربعۃ من الشهود، کہ چار گواہ جو ہیں وہ گواہی دیں، على رجل وامرأۃ کسی مرد اور عورت پر، بالزنا زنا کی، زنا کے باب میں بینہ یہ ہے کہ چار مرد جو ہیں وہ گواہی دیں کسی مرد اور عورت پر زنا کی۔ और दलील क्या है, कहते हैं लिकौल ही ताला, अल्लाह ताला के इस कौल की वजह से, फस्ता शहीदू अलैहिन्न अरबातम मिनकुम, अल्लाह कुरान में फरमाते हैं कि अगर तुम्हारी औरतों में से कोई बदकारी करें, फस्ता शहीदू अलैहिन्न, तो तुम उन पर गवाह बना लो, अरबातन चार, मिनकुम अपने में से, तुम अपने में से चार गवाह उन पर बना लो। तो देखो चार गवाहों का जिक्र आया है कुरान में भाई जिना के मसले में। तो कहते हैं कुरान में अल्लाह फरमाते हैं फस्तशहिदु अलैहिन्न अरबअतम मिनकुम कि तुम उन औरतों पर अपने में से चार गवाह बना लो। वकाल अल्लाह ताला और अल्लाह फरमाते हैं कुरान में सुम्मलम यातू बि अरबअति शुहदा सुम्मलम यातू बि अरबअति शुहदा फिर वो चार गवाह न लेकर आए फिर वो चार गवाह न लेकर आए। भाई देखिए ये कुरान के अंदर अल्लाह ताला हद कजफ को बयान फरमाते हैं वल्लदीन यरमून अल मुहसनाती और वो लोग जो पाकदामन औरतों पर जिना की तोहमत लगाएं सुम्म लम यातू बि अरबअति शुहदा फिर वो चार गवाह न लेकर आए फजलिदूहुम समानीन जल्दा तो फिर उनको 80 कोड़े लगाओ वला तकबलू लहुम शहादतन अबदा और उनकी गवाही कभी कबूल न करो वह उलाइका हुमुल फासिकून और यही लोग फासिक हैं। तो देखो यहां पर भी चार गवाहों को जिक्र किया है अल्लाह ने जिना की तोहमत के मामले में। तो मालूम हुआ जिना के अंदर कम अज कम कितने गवाह चाहिए चार गवाह भाई। तो कहते हैं वकाल अल्लाह ताला और अल्लाह कुरान में फरमाते हैं सुम्मलम यातू बि अरबअति शुहदा फिर वो चार गवाह न लेकर आए। आगे देखिए वकाल अलैहि सलातु वस्सलामु लिल्लज़ी क़ज़फ़ इम्रअतहू और हुजूर अलैहि सलाम ने उस शख्स से फरमाया जिसने अपनी बीवी पर ज़िना की तोहमत लगाई थी इति बि अरबअतिन यशहदून अला सिदक़ मक़ालतिका इति बि अरबअतिन के चार गवाह लेकर आओ यशहदून अला सिदक़ मक़ालतिका जो तुम्हारे बात की सच्चाई पर गवाही दें। एक सहाबी ने अपनी बीवी पर जिना का इल्जाम लगाया भाई तो हुजूर अलैहि सलाम ने उनसे फरमाया इति बि अरबअतिन यशहदून अला सिदक मकालतिक के चार गवाह लेकर आओ जो तुम्हारी बात की सच्चाई की गवाही दें वरना तुम पर हद जारी होगी। तो देखो यहां पर भी चार गवाहों का जिक्र है हदीस के अंदर। मालूम हुआ जिना के मसले में कम अज कम चार गवाह चाहिए भाई। आगे देखिए वली अन्न फिश्तिरातिल अरबाती यतहक्कु माना सत्री और नीज इसलिए क्योंकि चार की शर्त लगाने के अंदर सतर का माना पाया जाएगा सतर का माना पाया जाएगा भाई। इस्लाम जो है लोगों के ऐब छुपाने का हुक्म देता है उनको फैलाने से रोकता है। तो जब चार गवाहों की शर्त होगी तो इसके अंदर सतर का माना आ गया क्योंकि चार गवाहों का होना तो बड़ा ही मुश्किल काम है। तो कहते हैं वली अन्न फिश्तिरातिल अरबअति यतहक्कु माना सत्री और इसलिए क्योंकि चार की शर्त लगाने में सतर का यानी छुपाने का माना पाया जाएगा वह हुआ मंदूबुन इलै ही और छुपाना जो है वह मंदूब इलै है यानी उसकी दावत दी गई है वह मुस्तहब है छुपाना मुस्तहब है पसंदीदा है। कहते हैं वह हुआ मंदूबुन इलै ही और वह मंदूब इलै है क्योंकि कहते हैं हदीस में आता है कि मन सतर अलैहि मा सतरहुल्लाह फी दुनिया वल आखिरा कि जो इन पर पर्दा डालेगा तो अल्लाह दुनिया और आखिरत में उस पर पर्दा डालेंगे। तो कहते हैं वो हुआ मंदूब उन इलैहि और ये मंदूब इलै है यानी पसंदीदा है इसकी तरफ दावत दी गई है वल इशाअतु जिद्दुहु और इशाअत इसकी जिद है फैलाना एक है गुनाह का छुपाना और एक है गुनाह का फैलाना। तो गुनाह का छुपाना मुस्तहब है पसंदीदा है और गुनाह का फैलाना ये इसकी जिद है तो ये मजमूम है भाई ना पसंदीदा है भाई। तो कहते हैं वल इशाअतु जिद्दुहु और गुनाह को फैलाना जो है जिद्दुहु वो इस सतर की जिद है भाई। भाई देखिए यहां पर आपके जहनों में सवाल पैदा होगा कि जिना के मामले के अंदर तो अल्लाह ने चार गवाहों का हुक्म दिया है लेकिन कत्ल जो है कत्ल एक मुसलमान को कत्ल कर देना यह तो जिना से भी बड़ा जुर्म है उसके अंदर तो चार गवाहों की शर्त नहीं है। तो इसमें क्या नुक्ता है क्या हिकमत है कि कत्ल के लिए दो गवाह ही काफी हैं लेकिन जिना के लिए चार गवाह चाहिए। तो वजह यह उलमा फरमाते हैं कि कत्ल ऐसा फेल है जो एक आदमी से भी हो सकता है, एक आदमी भी दूसरे को कत्ल कर सकता है, तो एक के फेल के लिए दो गवाह काफी हैं। जबकि जिना जो है वो मर्द और औरत का फेल है, दो अफराद का फेल है, तो दोनों की तरफ से दो दो गवाह चाहिए, इसलिए इसके अंदर चार गवाहों का हुक्म दिया शरीयत ने। आगे देखिए, कहते हैं वह ईदा शहीदू यस अलहुमुल इमाम अनि जिना मा हुआ व कैफ हुआ व अना जना व मता जना व बिमन जना। अब भाई याद रखो, जब गवाह जिना के लिए आ गए, वो जिना पर गवाही दे रहे हैं, तो इमाम उनसे, हाकिम और काजी उनसे पांच सवाल पूछेगा। भाई पूछेगा जिना किसे कहते हैं, ये भी मालूम है या नहीं, और फिर पूछेगा जिना कैसे किया जाता है, ये भी पूछेगा, और फिर पूछेगा इसने कहां जिना किया, और फिर पूछेगा कब जिना किया, यानी कितना जमाना गुजर गया है इसके जिना को, और ये भी पूछेगा किससे जिना किया। तो पांच सवाल पूछेगा काजी उनसे। पहला सवाल क्या कि जिना किसे कहते हैं। वजह यह कि बहुत से लोगों को जिना की हकीकत का ही नहीं पता होता, वो हर हराम वती को जिना समझते हैं, वो हर हराम वती को जिना समझते हैं, हालांकि हर हराम वती तो जिना नहीं है। मसलन बीवी के साथ हैज के अय्याम में वती करना हराम है, लेकिन ये जिना नहीं है, ये जिना नहीं। तो हराम होना आम है, जिना भी हराम वती है, लेकिन इसके अलावा भी हराम वती हो सकती है। तो बाज लोग हर हराम वती को जिना समझते हैं, तो इसलिए उन गवाहों से पूछा जाएगा कि जिना किसे कहते हैं, भाई कि जानते भी हो या नहीं जिना किसे कहते हैं, और फिर उनसे पूछेगा कि जिना कैसे किया जाता है। तो इसके अंदर भी वो बतलाएंगे कि जिना के अंदर दुखूल किया जाता है, दुखूल किया जाता है इसलिए क्योंकि मैंने बताया लोगों की इसकी हकीकत का ही नहीं पता। बाज लोग सिर्फ दवाई जिमा को ही जिना करार दे देते हैं। एक शख्स ने एक औरत से गलत ताल्लुक कायम किया, तो उसने दुखूल तो नहीं किया लेकिन और अफाल किए, तो इसको भी वो जिना ही समझते हैं। तो लिहाजा काजी उनसे पूछेगा ये बताओ जिना किसे कहते हैं, वो बतलाएं कि जिना इसे कहते हैं कि औरत के अगले मकाम में जिमा किया जाए ऐसी औरत जिसमें इसकी मिल्कियत नहीं है और न किसी किस्म का शुबा है। भाई ये आपके हाशिए में गुज़श्ता सफे पर जहां जिना का जिक्र आया था वहां जिना की तारीफ दी हुई है बाकायदा भाई कि जिना जो है अज़िना क़ज़ा उल मुकल्लफी शहवतहु फी क़ुबूली मरअतिन खालियतिन अलिल मिल्कैनी व शुबहतिहिमा व शुबहतिल इश्तिबाही। कि जिना जो है वह मुकल्लफ का, मुकल्लफ किसे कहते हैं, आकिल बालिग, हर आकिल बालिग मुकल्लफ है। मुकल्लफ का क्या माना, जिम्मेदार है, उस पर शरी अहकाम लागू होते हैं। तो जिना कहते हैं अज़िना कजा उल मुकल्लफी के कोई आकिल बालिग पूरी करे शहवतहू अपनी शहवत को फी कुबुली मरअतिन किसी औरत के अगले मकाम में खालियतिन अनिल मिल्कैनी जो दोनों किस्म की मिल्कियतों से खाली हो, यानी ना उसकी बीवी हो और ना उसकी बांदी हो, दोनों तरह की मिल्कियतों से खाली हो। व शुबहती ही मां और नीज वहां शुबह मिल्कियत भी ना हो, जैसे बाप अपने बेटे की बांदी से सोहबत कर ले, तो आप पढ़ चुके हैं वहां शुबा आ गया क्योंकि हदीस में हुजूर ने फरमाया अंता व मालुका लि अबी का, और आपने पढ़ा है कि अदना शुबे की वजह से भी हद साकित हो जाती है। तो जिना किसे कहते हैं कि किसी आकिल बालिग का औरत के अगले मकाम में अपनी शहवत को पूरा करना, और वो औरत भी ऐसी है कि ना वो उसकी बीवी है और ना उसकी बांदी है और ना वहां किसी किस्म का शुबा मौजूद है। भाई तो काजी उनसे पूछेगा कि जिना किसे कहते हैं, और फिर पूछेगा कि जिना कैसे किया जाता है, कैसे किया जाता है। ये ना हो वो सिर्फ शर्मगाहों के मिलाने को या दवाई जिमा को ही जिना समझ रहे हों, तो वो जब बयान कर दें कि जिना के अंदर बाकायदा दुखूल किया जाता है, अब मालूम हुआ कि इनको जिना की हकीकत का इलम है। भाई और फिर काजी उनसे पूछेगा कि इसने कहां जिना किया था, ये भी पूछेगा। भाई वजह यह कि हद का मामला है, नाजुक मामला है, तो पूरी कोशिश की जाएगी किसी तरह हद को टाल दिया जाए। किसी तरह हद को टाल दिया जाए। तो लिहाजा पूछेगा कि इसने कहां जिना किया था, क्योंकि हो सकता है इसने जिना दारुल हर्ब में किया हो और दारुल हर्ब के अंदर जिना किया जाए, तो याद रखो वो तो हमारी ममलिकत के तहत नहीं आता, तो वहां किए हुए जिना पर हद जारी नहीं हो सकती भाई। और फिर उनसे काजी पूछेगा मताजाना, इसने कब जिना किया था, किस जमाने में किया था। वजह यह कि हो सकता है ये पुरानी बात हो भाई, हो सकता है ये पुरानी बात हो, लिहाजा काजी पूछेगा। याद रखो जब जिना पुराना हो गया तो अब उस पर गवाही की वजह से हद जारी नहीं की जा सकती। और वो कितनी मुद्दत है, तो साहिबैन फरमाते हैं एक माह। अगर गवाह कहते हैं जी ये एक माह पुरानी बात है तो ये तो बात पुरानी हो चुकी, अब हद जारी नहीं की जाएगी। भाई क्यों नहीं हद जारी की जाएगी, कहते हैं वजह यह कि अब इनकी गवाही में शुबा आ गया, इनकी गवाही में शुबा आ गया। किस तरह शुबा आया, कहते हैं भाई एक महीना गुजर गया है और ये आज आकर गवाही दे रहे हैं। मालूम हुआ शुरू में इनका इरादा यह था कि इस पर पर्दा डाल देते हैं, किसी को नहीं बताते जी। शुरू में इनका ये इरादा था, बाद में अब इनकी कोई नई दुश्मनी इस आदमी से बन गई है और अब ये गवाही देने आ गए। अगर इनको शरीयत की फिक्र थी, अल्लाह के अहकाम को नाफिज करने की फिक्र थी, तो फिर तो उसी वक्त आते भाई जी। मालूम हुआ किसी नई दुश्मनी ने इनको गवाही देने पर उभारा है, दिलों में ये बदगुमानी आती है, लिहाजा एक महीना गुजर चुका है तो बात पुरानी हो गई, अब हद जारी नहीं की जा सकती। लेकिन याद रखो ये वो सूरत है कि जब गवाह इतनी दूर न रहते हों, अगर गवाह इतनी ही दूर रहते हैं कि वहां से आते आते ही महीना लग जाता है तो फिर इस पर गवाही को सुना जाएगा भाई। तो साहिबैन के नजदीक ये जो पुराना होने का जमाना है ये एक महीना है भाई, और जबकि बाज़ उलमा फरमाते हैं कि छह माह है भाई, ये मुद्दत कितनी है, छह माह भाई। और फिर काजी पूछेगा बिमन जाना कि किस औरत के साथ इसने जिना किया था, किस औरत के साथ जिना किया था। वजह यह कि बाज़ औक़ात न गवाहों को पता होता है और न जिसके खिलाफ गवाही दी जा रही है उसको पता होता है, वहां शुबा पाया जाता है। मसलन बाप ने अपने बेटे की बांदी से सोहबत कर ली थी, आपने तो हिदाया वगैरह पढ़ी है, आपको तो मसले का पता है, लेकिन हर आदमी को तो इस मसले का पता नहीं। तो एक बाप ने अपने बेटे की बांदी से सोहबत कर ली थी और गवाह उसको पकड़ कर ले आए कि इसने जिना किया है। हालांकि यहां तो शुबा मौजूद है, बेटे के बारे में हुजूर अलैहिस्सलाम ने एक सहाबी से फरमाया अंतवा मालूका लि अबी का, इसकी वजह से शुबा आ गया भाई। तो लिहाजा काजी ये तमाम सवालात पूछेगा ताकि किसी तरह हद को टाला जा सके भाई। तो कहते हैं वह ईदा शहीदू, और जब वो गवाह गवाही दें, यस अलहुमुल इमामू, तो काजी उनसे पूछेगा आनी जिना, जिना के बारे में कि मा हुआ, कि जिना क्या है, वह कैफ हुआ, और जिना कैसे किया जाता है, वह ऐना जना, और इसने कहां जिना किया था, वह मता जना, और इसने कब जिना किया था, वह बिमन जना, और इसने किसके साथ जिना किया था। लिअन्न नबी अलैहि सलातु वस्सलाम मुस्तफसरा माइजन अनिल कैफियति व अनिल मजनियति, इसलिए क्योंकि हुजूर अलैहिस्सलाम ने इस्तफसरा माइजन, हुजूर अलैहिस्सलाम ने हजरत माइज रजी अल्लाह तआला अन्हु से पूछा था भाई। हजरत माइज रजी अल्लाह तआला अन्हु भाई ये सहाबी रसूल हैं, ये हुजूर अलैहिस्सलाम के पास तशरीफ लाए और कहने लगे या रसूल अल्लाह मुझसे जिना हो गया है, मुझे गुनाह से पाक कर दीजिए। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने इनसे रुख फेर लिया और ये चले गए, फिर आ गए और फिर कहा या रसूल अल्लाह मुझसे जिना हो गया है, मुझे पाक कर दीजिए। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फिर इनसे रुख फेर लिया, ये फिर चले गए, फिर उसके बाद दोबारा आए और फिर कहा या रसूल अल्लाह मुझसे जिना हो गया है, मुझे पाक कर दीजिए। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फिर रुख फेर लिया, ये चले गए, और चौथी मर्तबा फिर ये आए कि या रसूल अल्लाह मुझसे जिना हो गया है, मुझे पाक कर दीजिए। तो फिर उसके बाद हुजूर अलैहिस्सलाम ने उनसे ये बातें पूछी, हुजूर अलैहिस्सलाम ने उनसे जिना वगैरह उसकी कैफियत के बारे में पूछा और किससे जिना किया है ये पूछा। تو یہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ اور یہ شادی شدہ تھے بھائی، لہذا جب چار دفعہ اقرار کر لیا انہوں نے تو ان کا زنا ثابت ہوا، اور پھر حضور علیہ السلام نے ان کو رجم کرنے کا حکم دیا بھائی، رجم کرنے کا، تو پھر ان کو رجم کر دیا گیا. یاد رکھو صحابہ سے اس طرح کی جو غلطیاں ہوئیں، صحابہ سے اس طرح کی جو غلطیاں ہوئیں اس کے سلسلے میں ہمارے اکابر کا بڑا پیارا مذہب ہے. ہمارے اکابر کا مذہب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تکوینی طور پر صحابہ سے یہ غلطیاں کروائیں. وجہ یہ کہ اسلام جو ہے ایک کامل دین ہے، زندگی کے ہر شعبے میں انسان کی رہنمائی کرتا ہے، اور یہ دین قیامت تک کے آنے والے لوگوں کے لیے ہے. تو لہذا اس کے اندر جہاں اور چیزوں کی مثالیں موجود تھیں حضور علیہ السلام کے زمانے میں، وہاں ضرورت تھی کہ سزاؤں کا نظام بھی لوگوں کے سامنے رہے کہ اسلام میں یہ سزائیں ہیں اور ان کو اس طرح نافذ کیا جاتا ہے. چنانچہ تکوینی طور پر بعض صحابہ سے اللہ نے ایسی غلطیاں کروائیں کہ پھر ان پر وہ سزا نافذ کرنا پڑی، اور وہ قیامت تک کے لوگوں کے لیے نمونہ بن گیا کہ اسلام کے اندر اس طرح کی سزائیں ہیں اور ان کو اس طرح نافذ کیا جاتا ہے. چنانچہ آپ دیکھیے تو صحیح، حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھئی یہ خود آ رہے ہیں حضور کے پاس کہ مجھ سے زنا ہو گیا ہے، مجھے پاک کر دیجئے، حالانکہ ان کو بھی پتا ہے میں شادی شدہ ہوں، مجھے رجم کیا جائے گا. تو کس کی اتنی ہمت ہو سکتی ہے کہ خود اپنے آپ کو رجم کے لیے پیش کرے؟ گناہ ہو بھی جائے وہ اللہ سے رو رو کر اب معافیاں طلب کرتا رہے گا، لیکن یہ حضور علیہ السلام کے تربیت یافتہ لوگ تھے جو خود اپنے آپ کو بڑی سے بڑی سزا کے لیے بھی پیش کر رہے ہیں تاکہ اللہ ان سے راضی ہو جائے. تو صحابہ کے بارے میں ہمارے اکابر کا بڑا پیارا مذہب ہے کہ صحابہ سے اگر اس طرح کی کوئی غلطیاں بھی ہوئی ہیں وہ تکوینی طور پر اللہ نے کروائیں تاکہ اسلامی سزائیں عملی طور پر بھی لوگوں کے سامنے آ جائیں بھائی. تو کہتے ہیں لِأَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، اس لیے کیونکہ حضور علیہ السلام نے استفسر ماعزاً، حضور علیہ السلام نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا عن الکیفیت، زنا کی کیفیت کے بارے میں، وعن المزنیت، اور وہ عورت جس سے زنا کیا تھا اس کے بارے میں، ولأن الاحتیاط فی ذلک واجب، اور اس لیے کیونکہ اس پوچھنے میں احتیاط واجب ہے، اس میں احتیاط واجب ہے، لأن عصاه غیر الفعل فی الفرج عناه، یہ ترجمہ توجہ سے سمجھ لیں، لأنه عصاه غیر الفعل فی الفرج عناه، اس لیے کیونکہ ہو سکتا ہے یہ شخص جس کے خلاف گواہی دی جا رہی ہے، یہ جو اقرار کر رہا ہے، لأنه عصاه، اس لیے کیونکہ شاید یہ آدمی جو ہے غیر الفعل فی الفرج، عورت کی شرمگاہ کے علاوہ فعل کو، عناه اس کا ارادہ کر رہا ہو، عورت کی شرمگاہ میں دخول کے علاوہ کسی اور فعل کا ارادہ کر رہا ہو. ہو سکتا ہے اس کو زنا کی حقیقت کا ہی پتا نہ ہو، وہ صرف مثلا عورت کے ساتھ گلے ملنے کو یا بوسا لینے کو ہی ہو سکتا ہے زنا سمجھ رہا ہو. اس لیے اس سے پوری تفصیل پوچھی جائے گی کہ جانتے بھی ہو زنا کسے کہتے ہیں بھائی. ترجمہ سمجھ میں آیا، لأنه عصاه غير الفعل في الفرج عناه، اس لیے کیونکہ شاید اس نے شرمگاہ میں فعل کے علاوہ جو ہے اس کا، عناه اس کا ارادہ کیا ہو، او زنا فی دار الحرب، یا ہو سکتا ہے اس نے دار الحرب میں زنا کیا ہو، اور اس صورت میں بھی حد واجب نہیں ہوتی، او فی المتقادم من الزمان، تقادم کا معنی ہے پرانا ہونا، او فی المتقادم من الزمان، یا اس نے کچھ پرانے زمانے کے اندر جو ہے زنا کیا ہو، اور میں نے بتایا کہ یہ صاحبین کے نزدیک ایک ماہ ہے، ایک ماہ اگر گزر گیا تو اس کا مطلب ہے بات پرانی ہو چکی. تو کہتے ہیں او فی المتقادم من الزمان، یا اس نے پرانے زمانے میں کیا ہو زنا، یعنی زمانہ زیادہ گزر چکا ہے، او کانت له شبہۃ لا یعرفها ہوا ولا الشہود، او کانت له شبہۃ، یا اس کے لیے وہاں کوئی شبہ ہے، لا یعرفها ہوا ولا الشہود، جسے وہ خود بھی نہیں جانتا اور نہ گواہ جانتے ہیں. جیسے باپ اپنے بیٹے کی باندی سے صحبت کر لے، اب اس کو بھی نہیں پتا اور اس کے گواہوں کو بھی نہیں پتا کہ یہاں پر شبہ موجود تھا، یہاں حد جاری نہیں ہو سکتی. तो कहते हैं अवकानत लहू शुभहतुन ला यारिफुहा हुआ वला शुहूदु, शुभहा नकेरा है और नकेरा के बाद ला यारिफुहा फेल आ रहा है तो ये इसके लिए सिफत बनेगा। तो कहते हैं अवकानत लहू शुभहतुन, या उस शख्स के लिए वहां ऐसा शुबा हो, ला यारिफुहा हुआ वला शुहूदु, जिसे वो खुद भी नहीं जानता और गवाह भी नहीं जानते, का वक्त इजारियती लिबनी, जैसे कि बेटे की बांदी से वती। फयुस्तक्सा फी ज़ालिका, इस्तक्सा काफ है दो नुक्तों वाला और स्वाद है, इस्तक्सा यस्तक्सी इस्तिक्सा का माना है किसी मसले में इंतहाई तहकीक करना जी। किसी मसले में इंतहाई तहकीक करना। फयुस्तक्सा फी ज़ालिका, तो इसके अंदर पूरी तहकीक की जाएगी, इह्तियालन लिद्दरई, इह्तियालन हीला करने के लिए, लिद्दरई उस हद को टालने के लिए, दर उनका माना है दूर करना खत्म करना, इख्तियाल का माना है हीला करना, इख्तियाल लिद्दर ई उस हद के दूर करने का हीला करने के लिए, कि उस हद के दूर करने का हीला हो जाए किसी तरह भाई। फिर तर्जमा देख लीजिए, कहते हैं फयुस्तक्सा फी ज़ालिक इह्तियालन लिद्दरई, तो इसमें पूरी तहकीक की जाएगी उस हद को दूर करने का हीला करते हुए, हद को दूर करने का हीला करते हुए कि किसी तरह हद साकित हो जाए। आगे देखिए, फैदा बयनू जालिका, बस जब वो गवाह ये बयान कर दें, वकालू और वो गवाह कहें, रअयनाहु वती आहा, कि हमने इस आदमी को देखा कि इसने उस औरत से वती की, फी फर्जीहा उस औरत की शर्मगाह में, यानी अगले मकाम में, कल मीली फिल मुकुहलती, जैसे कि सिलाई होती है सुरमा दानी में। देखो ऐन दुखूल को बयान कर रहे हैं, किसको, ऐन दुखूल को, कि इसने जिना किस तरह किया था, जैसे सिलाई सुरमा दानी में दाखिल होती है। मालूम होता है शरीयत यह चाहती है कि किसी न किसी तरह यह हद टल जाए, किसी न किसी तरह यह हद टल जाए, यहां तक कि गवाह यह भी बयान करें कि हमने ऐन दुखूल होता हुआ देखा, हमने ऐन दुखूल होता हुआ देखा, और इतना कौन देख सकता है भाई। मालूम हुआ कि जिना जब भी साबित होगा वो इकरार ही से साबित हो सकता है, गवाही के जरिए साबित होना बड़ा ही मुश्किल है जिना का। तो वो काल और उन्होंने कहा, रअयनाहु वती अहाफी फर्जीहा, कि हमने इसको देखा कि इसने सौरत की शर्मगाह में वती की, कल मीली फिल मुकुहलती, जैसे कि सिलाई होती है सुरमा दानी में, वसा अलल काजी अनहुम, और काजी उन गवाहों के बारे में पूछे, भाई गवाहों का आदिल होना जरूरी है, और फिर यह तो हद का मामला है, इसमें और भी ज्यादा एहतियात की जाएगी, लिहाजा यहां पर गवाहों के बारे में काजी पोशीदा तौर पर भी पता करवाएगा कि ये आदिल लोग हैं या नहीं, और जाहिरी तौर पर भी पता करवाएगा कि ये आदिल हैं या नहीं, और मामलात में जब गवाह हो तो वहां पर पोशीदा तौर पर पता नहीं करवाया जाता, लेकिन यहां बाकायदा पोशीदा तौर पर भी पता करवाया जाएगा। चुनाचे काजी ये जो गवाह आए हैं इनके जानने वालों को खत लिखेगा छुपाकर, और जानने वाले भी जो आदिल हैं, जो खुद क्या हैं, आदिल हैं, काबिल एतमाद नेक लोग हैं, सच्चे लोग हैं, उनको काजी खत लिखेगा कि ये फुला आदमी जो फुला का बेटा है, फुला जगह रहता है वगैरह, पूरी निशानियां लिख देगा ताकि वो पढ़ने वाला पहचान ले कि किस आदमी की बात हो रही है। तो ये फला आदमी जो है ये यहां जिना के मामले में गवाही देने आया है, आप इसके बारे में क्या जानते हैं, ये आदिल है या आदिल नहीं, अगर ये आदिल है तो नीचे लिख दो ये आदिल है, और अगर आदिल नहीं है तो कुछ भी ना लिखो, खाली छोड़ दो इस जगह को, या लिख दो कि अल्लाह जानता है। तो चुनाचे इस तरह वो खुफिया तौर पर उन गवाहों का पता करवाएगा कि ये आदिल हैं या आदिल नहीं है भाई, और फिर ऐलानिया भाई सबके सामने भी पता करवाएगा। चुनाचे फिर उस आदिल जिसने खुफिया तौर पर तस्दीक कर दी थी कि ये आदिल है, उनको सामने भी बुलवाएगा, और वो सबके सामने कहेंगे कि हां ये है वो आदमी जिसके बारे में हमने लिखा था कि यह आदिल है। तो पोशीदा तौर पर भी काजी तादील करवाएगा और जाहिरी तौर पर भी, ऐलानिया तौर पर भी तादील करवाएगा। तो कहते हैं जब ये बयान कर दें वसअल अल काजी अनहुम और काजी उनके बारे में पूछे फउद्दिलु फिस सिर वल अलानियती तो उनकी तादील की गई यानी उनको काबिले एतमाद करार दिया गया। आपने पढ़ा है गवाह का आदिल होना जरूरी है। आदिल का क्या माना? काबिले एतमाद भाई, काबिले एतमाद यानी सच्चा आदमी है और दीन पर अमल करता है। और मैंने आपको बताया था, तारीफ बाकायदा लिखवाई थी कि आदिल किसे कहते हैं? जो कबीरा गुनाहों से बचता है, सगीरा पर इसरार नहीं करता। सगीरा हो तो जाते हैं लेकिन कभी कभार होते हैं, तो कबीरा गुनाहों से बचता है, सगीरा गुनाहों पर इसरार नहीं करता और नीज घटिया अफाल से भी अपने आप को बचाता है। मसलन रास्ते में बैठकर खाना पीना या रास्ते में कहीं पेशाब आ जाए वहीं रास्ते में एक तरफ पेशाब कर देना, देखो ये घटिया अफाल हैं। मुअज्जज आदमी ऐसा नहीं करता। तो कहते हैं वसअल अल काजी अनहुम, काजी उनके बारे में पूछेगा फउद्दिलु फिस्सिर्री वल अलानियती तो उनकी तादील की गई फिस्सिर्री पोशीदा तौर पर वल अलानियती और जाहिरी तौर पर हकमा बिशहादतिहिम तो फिर काजी फैसला कर देगा इनकी गवाही पर। तो मालूम हुआ सबसे पहले गवाहों का चार होना जरूरी है, चार गवाहों, उसके बाद आकर वो गवाही देते हैं और काजी उनसे वो पांच चीजें पूछेगा। वो सारी पांच चीजें इन्होंने बयान कर दी, गवाही हो गई, सारा गुजर गया। अब उसके बाद काजी फौरन फैसला नहीं करेगा बल्कि काजी इन गवाहों का पता करवाएगा, खुफिया तौर पर भी और जाहिरी तौर पर भी। तो गवाही के बाद यह पता करवाएगा और फिर गवाही के बाद पता चल गया ये सारे गवाह आदिल हैं, अब काजी फैसला लिखेगा कि इस शख्स पर हद जिना जारी कर दी जाए भाई। और अगर इनकी तादील न की गई, पता चला ये तो फासिक हैं या इनमें एक दो फासिक हैं, तो फिर इस सूरत में काजी हद का फैसला नहीं करेगा, काजी हद का फैसला नहीं करेगा और इनको भी हद कजफ नहीं लगाएगा कि तुम झूठ बोल रहे हो, क्योंकि उन्होंने तो अपनी गवाही से रुजू नहीं किया। तो बेशक ये गवाह फासिक हैं, आदिल नहीं है बल्कि फासिक हैं, फिर भी हो सकता है ये सच बोल रहे हों, लेकिन बहरहाल मामला हद का है, गैर फासिक की गवाही को कबूल नहीं किया जाएगा, उस पर फैसला नहीं किया जाएगा। और ये भी याद रखना अगर गवाहों में से कोई रुजू कर लेता है, भाई रुजू करना, गवाह रुजू कर लेता है, क्या माना? माना यह है कि गवाह अपनी गवाही से रुजू कर लेता है कि काजी साहब मैंने झूठ बोला था, मैंने झूठी गवाही दी थी, तो यह है गवाह का रुजू भाई, उसने अपनी गवाही से रुजू कर लिया और फिर इस सूरत में उस गवाह पर हद कजफ जारी होगी कि उसने एक मुसलमान पर जिना की तोहमत लगाई थी, उस पर हद कजफ जारी होगी, 80 कोड़े लगाए जाएंगे और उसकी गवाही भी अब जिंदगी भर के लिए कभी काजी कबूल नहीं करेगा। और बाकी हद साकित होगी या नहीं, कहते हैं भाई फिर इस सूरत में बाकी गवाहों को देखा जाएगा, बस एक या ज्यादा गवाहों ने रुजू कर लिया तो देखा जाएगा बाकी गवाह कितने हैं, अगर बाकी चार गवाह फिर भी पूरे हो रहे हैं फिर तो हद उसी तरह रहेगी, और अगर गवाह चार से कम हो गए तो फिर बाकी सब पर भी हद कजफ जारी हो जाएगी, बाकी सब पर भी हद कजफ जारी हो जाएगी और वो हद भी साकित हो जाएगी उस मुलजिम पर से भाई। अब फिर तर्जमा देख लीजिए, कहते हैं वसा अल काजी अनहुम और काजी उन गवाहों के बारे में पूछेगा फउद्दिलु फिस्सिर्री वल अलानियती तो उन गवाहों की तादील कर दी गई यानी उन्हें आदिल करार दिया गया, फिस्सिर्री पोशीदा तौर पर भी, वल अलानियती और ऐलानिया तौर पर भी, हकमा भी शहादतिहिम तो काजी उनकी गवाही पर फैसला कर देगा, वलम यक्तफी बिजाहिरिल अदालती फिल हुदूदी और काजी इक्तफा नहीं करेगा उनकी जाहिरी अदालत पर हुदूद में, काजी गवाहों की जाहिरी अदालत पर इक्तफा नहीं करेगा। भाई ये जो गवाह आए हैं ये मुसलमान हैं, इतना तो सबको पता है और मुसलमान तो सच ही बोलता है भाई, तो उसका मुसलमान होना ये जाहिरी तौर पर उसकी अदालत को बयान कर रहा है कि आदमी आदिल है। जब एक आदमी मुसलमान है तो जाहिर यही है कि यह सच बोल रहा है, तो यह है जाहिरी अदालत यानी जाहिरी तौर पर इस आदमी का, इस गवाह का काबिले एतमाद होना। लेकिन इस जाहिरी अदालत पर काजी इक्तिफा नहीं करेगा क्योंकि मसला हुदूद का है, लिहाजा पोशीदा तौर पर भी उसकी तादील करवाएगा और जाहिरी तौर पर भी इसकी तादील करवाएगा। तो कहते हैं वलम यक्तफी भी जाहिरिल अदालती फिल हुदूदी, और काजी जो है जाहिरी अदालत पर इक्तिफा नहीं करेगा हुदूद के मसले में, इख्तियालन लिद्दरई, हद को दूर करने का हीला करते हुए, हद को दूर करने का हीला करते हुए कि किसी तरह हद साकित हो जाए। तो लिहाजा पोशीदा तौर पर भी तादील करवाएगा और जाहिरी तौर पर भी। काला अलैहि सलातु वस्सलाम, हुजूर अलैहि सलाम फरमाते हैं इदराउल हुदूदा मस्ततअतुम, इदराउल हुदूदा कि तुम हुदूद को टाल दो, मस्ततअतुम जिस कदर तुम में इस्तेताअत हो, तुम लोग हुदूद को टाल दिया करो जिस कदर तुम में इस्तेताअत हो। तो इसीलिए ये इतने सवालात भी काजी करेगा और गवाहों का पोशीदा और जाहिरी तौर पर भी पता करवाएगा ताकि किसी तरह हद को साकित कर दिया जाए। तो कहते हैं काला अलैहि सलातु वस्सलाम, हुजूर अलैहि सलाम फरमाते हैं इदराउल हुदूद मस्ततअतुम के तुम हुदूद को टाल दिया करो जिस कदर तुम में इस्तेताअत हो, बिखिलाफ साइरिल हुकूकी, बखिलाफ बाकी हुकूक के, बखिलाफ बाकी हुकूक के वहां पर गवाहों की जाहिरी अदालत पर ही इक्तफा कर लिया जाएगा कि यह मुसलमान है तो वो सच ही बोल रहा होगा। तो कहते हैं बेखिलाफ साइरिल हुकूक, बखिलाफ बाकी हुकूक के, ईंदा अबी हनीफा तरहमला इमाम साहब के नजदीक, व तादीलु सिर वल अलानियत नुबयिनुहु फी शहादात इंशा अल्लाह तआला। साहिब हिदायत फरमाते हैं कि पोशीदा तौर पर और जाहिरी तौर पर तादील जो है इसको हम किताबु शहादात में बयान करेंगे इंशा अल्लाह। तो साहिब हिदायत फरमा रहे हैं कि किताबु शहादात के अंदर हम बयान करेंगे कि सिर्रन और अलानियतन तादील कैसे की जाती है भाई, जबकि मैंने यहीं पर वो तफसील बयान कर दी जो साहिब हिदायत किताबु शहादात में बयान फरमाएंगे। तो कहते हैं वतादील सिर वल अलानियती, और पोशीदा तौर पर और एलानिया तौर पर तादील करना, नुबय्यिनुहु फी शहादाती, इसको हम शहादात की किताब में बयान करेंगे इंशा अल्लाह ताला। काला फिल असली, काला फिल असली, असल से मुराद है मबसूत भाई, काला फिल असली इमाम मोहम्मद रहमला मबसूत में फरमाते हैं यहबिसुहु हत्ता यसअला अन शुहूदी लिल इत्तिहाम बिल जिनायती। इमाम मोहम्मद रहमला फरमाते हैं कि गवाहों ने गवाही दे दी, अब काजी ने गवाहों की तादील करवानी है खुफिया तौर पर भी और ऐलानिया भी, तो इसमें कुछ वक्त लगेगा। तो जब तक इस मुलजिम को काजी जेल में रखे कि कहीं ये भाग ना जाए, इस मुलजिम को काजी जेल में रखे, वो एक दिन या दो दिन लगते हैं इसके पता करवाने में जब तक इसको जेल में रखे, क्योंकि हुजूर अलैहि सलाम ने भी एक आदमी को कैद में रखा था, एक आदमी उस पर ऊंटों की चोरी की तोहमत लगाई गई, तो हुजूर अलैहि सलाम ने एक दिन उसको कैद में रखा और फिर पता लग गया कि इसने चोरी नहीं की, तो हुजूर अलैहि सलाम ने उनको आजाद किया और फरमाया इस्तगफिर ली, मेरे लिए अल्लाह से मगफिरत तलब करो, यानी मैंने तुम्हें एक दिन कैद रखा था। तो उन्होंने कहा गफर अल्लाह लका या रसूल अल्लाह, अल्लाह आपकी मगफिरत फरमाए ऐ अल्लाह के पैगंबर। तो हुजूर ने फरमाया वलका वकतलका फी सबीलिही, और अल्लाह आपकी भी मगफिरत फरमाए और आपका अल्लाह के रास्ते में कत्ल होना भी, अल्लाह आपकी भी मगफिरत फरमाए और अल्लाह के रास्ते में आपका कत्ल होना भी, यानी हुजूर ने इशारा फरमा दिया कि तुम अल्लाह के रास्ते में शहीद होगे भाई। चुनांचे रिवायात में आता है कि वो जंगे यमामा में शहीद हुए भाई। तो इमाम मोहम्मद रहमला फरमाते हैं कि इस आदमी को कैद में रखा जाएगा जिस पर जिना का इल्जाम है जब तक गवाहों की तादील ना हो जाए। तो काल फिल असली इमाम मोहम्मद रहमला मबसूत में फरमाते हैं यहबिसुहु हत्ता यसअला अनी शुहूदी, कि काजी इसको कैद करेगा यहां तक कि काजी पूछ ले अनी शुहूदी गवाहों के बारे में, लिल इत्तिहाम बिल जिनायती, भाई जेल में क्यों रखेगा काजी इसको, कहते हैं लिल इत्तिहाम बिल जिनायती, जिनायत का इल्जाम लगाने की वजह से कि इस पर एक जुर्म का इल्जाम लगाया गया है। तो जिनायत जुर्म को कहते हैं। और इत्तेहाम का माना है इल्जाम लगाना, लिल इत्तेहाम बिल जिनायती, जुर्म का इल्जाम लगाने की वजह से कि इस पर जुर्म का इल्जाम लगाया गया है। वकद हबस रसूलुल्लाह अलैहि सलातु वस्सलाम रजुलन बितोहमति, और हुजूर अलैहि सलाम ने भी एक आदमी को तोहमत की वजह से कैद में रखा। بخلاف الديون بخلاف ديون کے حيث لا يحبس فيها قبل ظهور العدالة بخلاف ديون کے حيث لا يحبس فيها کہ اس کے اندر اس مقروض کو قید میں نہیں ڈالا جائے گا قبل ظهور العدالة گواہوں کی عدالت ظاہر ہونے سے پہلے بھئی ایک آدمی ہے اس پر لوگوں کے قرضے ہیں وہ قرضے ادا نہیں کر رہا وہ قاضی کے پاس اسے لے آئے और गवाहों ने गवाही भी दे दी कि इसने फुलां का या फुलां का इतना इतना कर्जा अदा करना है, तो इस सूरत में अब काजी उन गवाहों की तादील, उन गवाहों का पता करवाता है कि ये गवाह आदिल हैं या आदिल नहीं है। तो क्या इस दौरान इस मकरूज को जेल में डालेगा काजी? कहते हैं नहीं, इस दौरान इस मकरूज को काजी जेल में नहीं डालेगा। तो इसकी क्या वजह है? वो जिना के मसले में आप कहते थे कि वो जो मुलजिम है उसको जब तक गवाहों की तादील नहीं होती उसको जेल में डालेंगे, और यहां मकरूज के मसले में आप कहते हैं कि उसको जेल में नहीं डाला जाएगा। तो याद रखना, उसकी वजह यह है कि हद के अंदर तो असल सजा बहुत ज्यादा है, तो ये जो जेल में इसको रखेंगे ये तो मामूली सी सजा है उसके मुकाबले में, लिहाजा चूंकि असल सजा बहुत बड़ी है लिहाजा इसको जेल में डाल दिया जाएगा। ये जेल में डालना उसके मुकाबले में कुछ भी नहीं है। जबकि वो जो कर्ज का मसला जो है उसके अंदर तो आखिरी दर्जा यही है कि काजी मकरूज को जेल में डाल देता है, तो वहां तो इंतहाई सजा जो है वो जेल में डालना है। तो गवाहों की तादील के दौरान काजी ये इंतहा दर्जे की सजा अभी से उसको नहीं देगा भाई। तो साहिब हिदायत आपको बतलाएंगे कि आगे हम इसका फर्क बयान करेंगे, और मैंने इन दोनों में फर्क बयान कर दिया। तो कहते हैं बिखिलाफी दुयूनी, बखिलाफ कर्जों के, हैसुला युहबसु फीहा कबला जुहूर अदालती, क्योंकि उन कर्जों के अंदर जो है उस मकरूज को कैद में नहीं डाला जाएगा उन गवाहों की अदालत के जाहिर होने से पहले। वसयाती कल फर्क इंशा अल्लाह ताला, और अन करीब आपके लिए फर्क आ जाएगा इन दोनों में इंशा अल्लाह अगर अल्लाह ने चाहा। मुहशी हजरात फरमाते हैं कि साहिब हिदाया ने यह वादा तो फरमाया कि आगे फर्क आ जाएगा, लेकिन वो इसको पूरा करना भूल गए भाई। साहिब हिदाया ने शुरू में जिक्र फरमाया था ये जो हिदाया की चार जिल्दें हैं ये असल में ये खुलासा है किफायतुल मुंतही का जो 80 जिल्दों में थी, तो ये 80 जिल्दों का खुलासा चार जिल्दों में उन्होंने लिखा और कमाल का खुलासा लिखा कि इंसान हैरान रह जाता है भाई। तो कोई एक आध बात बाज औकात ऐसा होता है, किफायतुल मुंतही में तो उन्होंने जिक्र की थी, हिदाया में भी उनका जिक्र करने का इरादा होगा, लेकिन फिर बाद में उसको जिक्र करना भूल गए भाई। तो यहां इस बात को भी वो जिक्र करना, इस फर्क को बयान करना भी वो भूल गए भाई। तो कहते हैं वसयाती कल फर्क इंशा अल्लाह ताला, और आन करीब इन दोनों के दरमियान जो फर्क है वो आपके पास आ जाएगा इंशा अल्लाह ताला। आगे देखिए قال صاحب قدوری فرماتے ہیں والاقرار ان يقر البالغ العاقل, اب اقرار کو بیان کر رہے ہیں بھئی صاحب ہدایہ نے آپ کو بتلایا تھا کہ زنا جو ہے وہ بینہ کے ذریعے ثابت ہوگا یا اقرار کے ذریعے, تو اب اقرار کے ذریعے زنا کیسے ثابت ہوگا اس کو بیان کرنے لگے ہیں۔ یاد رکھو صاحب ہدایہ آپ کو بتلائیں گے कि इकरार से भी जिना तब साबित होगा जब इकरार करने वाला आकिल और बालिग हो यानी मुकल्लफ हो, आकिल और बालिग हो यानी मुकल्लफ हो, और फिर वो अपने ऊपर जिना का इकरार करे चार मरतबा, बाकी मामलात में एक दफा इकरारी काफी है लेकिन जिना का मामला बड़ा नाजुक है लिहाजा यहां चार मरतबा इकरार करेगा, और वो चार मरतबा भी मुख्तलिफ मजलिसें हों, एक ही मजलिस में नहीं, क्योंकि एक ही मजलिस जो है वो तो चीजों को मुत्तहिद कर देती है। जैसे एक ही मजलिस में अगर आप एक ही आयत सजदा को 10 दफा भी तिलावत कर लें तो आप पर एक ही सजदा वाजिब होगा भाई, आप पर एक ही सजदा वाजिब होगा। तो मजलिस जो है वो मुख्तलिफ चीजों को जमा कर देती है, लिहाजा यहां पर भी इकरार जो वो चार इकरार करेगा वो अलग मजलिसों में करेगा, अगर एक ही मजलिस में वो चार इकरार करता है तो उनमें तो इत्तेहाद का शुबा आ जाएगा, ये तो गोया एक ही इकरार है सारा, और शुबे की वजह से तो हद साकित हो जाया करती है। तो लिहाजा यहां चार अलग अलग मजलिसों में उसका इकरार करना जरूरी है, और चार अलग मजलिसें इस इकरार करने वाले की मुराद हैं, काजी की चार मजलिसें नहीं मुराद। काजी की चाहे वही एक मजलिस है, लेकिन इसने एक दफा इकरार किया फिर चला गया, फिर दोबारा आया फिर चला गया, तो इस तरह चार इकरार उसने कर लिए। तो जब एक दफा चला गया तो मजलिस बदल गई। और नीज ये भी जरूरी है कि हर मर्तबा काजी जो है इसको वापस भेज दे और नागवारी का इजहार करे। वो आया उसने कहा काजी साहब मैंने जिना किया है, मुझे मुझ पर हद जारी कर दीजिए, तो काजी उसको कहेगा जाओ भाई अल्लाह से मगफिरत तलब करो, ये कैसी बात कर रहे हो। तो काजी उसको भेज देगा और काजी नागवारी का इजहार करेगा भाई, ताकि किसी तरह ये चला जाए और हद टल जाए भाई। लेकिन ये दोबारा आया, फिर तीसरी दफा आया, और फिर जब चौथी दफा आ गया और चौथी दफा उसने इकरार कर लिया, तो अब काजी उससे वही सवाल पूछेगा जो पहले गवाहों से पूछे थे। लेकिन गवाहों से पांच सवाल पूछता था काजी, उनमें एक सवाल यह भी था कि मता जना, इसने कब जिना किया है, ताकि कहीं ऐसा ना हो बात पुरानी हो। लेकिन इकरार करने वाले से यह सवाल नहीं पूछेगा कि कब जिना किया है, क्योंकि यहां पर दिलों में बदगुमानी नहीं आती। गवाह देर से अगर गवाही दे रहे हैं, वहां तो दिलों में बदगुमानी आती है कि मालूम हुआ पहले पर्दा डालना चाहते थे और अब कोई नई दुश्मनी बन गई है, अब इसलिए उठकर आ गए उसके खिलाफ गवाही देने, तो वहां तो दिलों में बदगुमानी आती है जमाना ज्यादा गुजरने की वजह से। लेकिन इकरार के मसले में तो जमाना ज्यादा गुजरने से दिलों में कोई बदगुमानी नहीं आती, लिहाजा जमाने का सवाल नहीं पूछेगा भाई। बात समझ में आ गई। तो देखिए काला साहिब कुदूरी फरमाते हैं वली करारू, और जिना का इकरार जो है वो ये है कि युकिर अल बालिग अल आकिल अला नफ्सिही बिज़िना, कि इकरार करे आकिल बालिग शख्स अपनी जात पर जिना का, अरबा मर्रातिन चार मर्तबा, फी अरबाई मजालिसा चार मजलिसों में, मिम मजालिसिल मुकिर्री, और ये चार मजलिसें इकरार करने वाले की चार मजलिसें हों भाई, काजी की चार मजलिसें मुराद नहीं, मिम मजालिसिल मुकिर्री इकरार करने वाले की चार मजलिसों में, कुल्लमा अकर्रा वो जब भी इकरार करे, रद्दहुल काजी काजी उसको रद्द कर दे, उस काजी उसको वापस लौटा दे भाई। तो यहां देखो पांच कैदें जिक्र हो गई, ये मतन था, मतन था पांच कैदें इकरार के लिए। पहली कैद कि ये आकिल बालिग हो यानी मुकल्लफ हो, दूसरी कैद चार मर्तबा इकरार करे, तीसरी कैद चार मजलिसों में अलग अलग मजलिसों में इकरार करे, चौथी कैद कि ये चार मजलिसें इकरार करने वाले की चार मजलिसें मुराद हैं, काजी की चार मजलिसें मुराद नहीं, और पांचवीं कैद कि हर मर्तबा काजी इसको वापस लौटा दे और नागवारी का इजहार करे और डांट दे। अब साहिब हिदायत में से हर एक की वजह जिक्र करेंगे कि ये पांचों शर्तें क्यों लगाई गईं। कहते हैं फश्तिरातुल बुलूग वल अक्ली, तो बालिग होने और अकल की शर्त जो है उसकी वजह यह है, लिअन्न कौल सबी वल मजनूनी गैर मुअतबरीन, कि बच्चे या मजनून जो है, जो पागल है यानी जिसको अकल ही नहीं है, कि बच्चे और मजनून का जो कौल है गैर मुअतबरीन, उसका कोई एतबार नहीं है, और हुआ गैर मुजिबिन लिल हद्दी, या इसलिए क्योंकि वह हद को वाजिब करने वाला नहीं, बच्चा या मजनून जिना का इकरार भी कर ले तो उसकी वजह से हद वाजिब नहीं हो सकती, क्योंकि आकिल बालिग होना जरूरी है भाई। तो कहते हैं अहुआ गैर मुजिबिन लिल हद्दी, या इस वजह से कि बच्चे और मजनून का जो कौल है वो हद को वाजिब करने वाला नहीं, वश्तिरातुल अरबाई मजहबुना, और चार इकरार की जो शर्त है मजहबुना, यह हमारा मजहब है, इंदल अहनाफ चार दफा इकरार जरूरी है, जबकि इमाम शाफी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि नहीं, एक ही दफा इकरार काफी है, एक ही दफा इकरार काफी है भाई। तो कहते हैं वश्तिरातुल अरबाई मजहबुना, और चार इकरारों की शर्त लगाना यह हमारा मजहब है, वाइंदा शाफई रहमहुल्लाह युक्तफा बिल इकरार मर्रतन वाहिदतन, और इमाम शाफी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि एक ही मर्तबा के इकरार पर इक्तफा कर लिया जाएगा, एतबारम बिसाइरिल हुकूकी, बाकी हुकूक पर कियास करते हुए, बाकी हुकूक में एक ही दफा इकरार काफी होता है। एक आदमी कहता है मैंने जैद के 10 लाख रुपए देने हैं, बस एक ही इकरार काफी है, लेकिन यहां पर चार अलग इकरार होने चाहिए। तो इमाम शाफी रहमतुल्लाह इस जिना के इकरार को कियास करते हैं बाकी हुकूक के इकरार पर, और वहां एक इकरार काफी, तो यहां भी एक इकरार काफी है। तो एतबारम बिसाइर हुकूक बाकी हुकूक पर कियास करते हुए वहादा लिअन्नहु मुज़हिरुन, और इसकी वजह यह है, इसकी वजह यह है, इमाम शाफी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि गवाहों की तादाद बढ़ती है तो बात पर एतमाद बढ़ता चला जाता है। एक आदमी गवाही दे तो बात पर इतना एतमाद नहीं, दो ने गवाही दी तो काफी एतमाद हो गया, तीन ने दी तो एतमाद और बढ़ गया, चार ने गवाही दे दी और ज्यादा दिल को इत्मीनान हो गया कि बात ऐसी ही है। तवज्जो है, तो गवाही में जो जो इजाफा होता चला जाता है उस बात पर इत्मीनान कल्बी बढ़ता चला जाता है, जबकि इकरार के अंदर ऐसा नहीं है। एक आदमी एक दफा है कहे मैंने यह काम किया है, चाहे सौ दफा कहे बात तो एक ही है। इकरार की वजह से कोई कल्बी इत्मीनान बढ़ता नहीं जितनी दफा भी इकरार हो जाए, तो इसलिए वो फरमाते हैं एक ही इकरार काफी है। तो कहते हैं वहादा, और ये इस वजह से लिअन्नहु मुज़हिरुन, क्योंकि जो इकरार है ये जाहिर करने वाला है, ये उस फेल को जाहिर करने वाला है। वह तकरार उल इकरारी ला युफीदु ज्यादाता जुहूरी, और इकरार का जो तकरार है ये ज्यादा जाहिर होने का फायदा नहीं देता, इससे कोई बात ज्यादा जाहिर नहीं होती। बिखिलाफी ज्यादतिल अदद फी शहादती, बखिलाफ गवाही के अंदर अदद की ज्यादती कि उसके अंदर ज्यादा जुहूर होता चला जाता है, दिल को ज्यादा इत्मीनान होता चला जाता है। भाई वलना, अब हमारी दलील आ गई कि चार इकरार जरूरी हैं। वलना, और हमारी दलील जो है हदीस माइज़िन रजी अल्लाह ताला अन्हु, वो हजरत माइज़ रजी अल्लाह ताला अन्हु की हदीस है। फइन्नहु अलैहि सलातु वस्सलाम अखर अल इकामता, क्योंकि हुजूर अलैहि सलाम ने हद कायम करने को मुअख्खर फरमा दिया। इला अंतमल इकरार मिनहु अरबा मर्रातिन, यहां तक कि उसकी तरफ से इकरार पूरा हो गया चार मरतबा। फी अरबाई मजालिसा, चार मजलिसों में हुजूर अलैहिस्सलाम ने उसके एक दफा के इकरार पर हद का हुक्म जारी नहीं फरमाया, बल्कि हुजूर ने हद को मुअख्खर फरमाया यहां तक कि उसने चार अलग अलग मजलिसों में चार दफा इकरार कर लिया। अगर चार से कम के अंदर ही इकरार से हद साबित हो गई थी तो हुजूर अलैहिस्सलाम एक शरई हुक्म को उसके साबित होने के बाद कभी भी मुआखर नहीं कर सकते थे। मालूम हुआ जब तक चार इकरार नहीं हुए उस पर हद भी वाजिब नहीं हुई। भाई अगर वाजिब हो चुकी होती तो हुजूर कभी शरई हुक्म को मुआखर न फरमाते। फिर तर्जमा देख लीजिए, वलना हदीस माइज़िन रजी अल्लाह ताला अन्हु, और हमारी दलील जो है हज़रत माइज़ रजी अल्लाह ताला अन्हु की हदीस है। फइन्नहु अलैहि सलातु वस्सलाम अखर अल इकामता, अल इकामा से मुराद है हद का कायम करना, इसलिए क्योंकि हुजूर अलैहि सलाम ने अखर अल इकामता हद कायम करने को मुअख्खर फरमा दिया। इला अंतमल इकरार मिनहु अरबा मर्रातिन फी अरबा मजालिसा, यहां तक कि उसकी तरफ से चार मर्तबा इकरार पूरा हो गया चार मजलिसों में। फलौ ज़हरा दूनहा, अगर इससे कम में ही इकरार जाहिर हो गया होता, अगर इससे कम के अंदर ही इकरार जाहिर हो गया होता, यानी इकरार की वजह से वो इकरार जो हद को वाजिब करने वाला है, अगर इन चार से कम के अंदर ही इस किस्म का इकरार जाहिर हो चुका होता, लमा अखरहा, तो हुजूर अलैहिस्सलाम कभी भी उसको मुअख्खर न फरमाते, उस हद के कायम करने को हुजूर कभी भी मुअख्खर न फरमाते। लिसुबूतिल वुजूबी, वुजूब साबित होने की वजह से, जब वुजूब साबित हो चुका है तो हुजूर कभी भी उसको मुअख्खर न फरमाते। वली अन्न शहादत अख्तुसत फीह बिज़ियादतिल अदद फकदल इकरार, ये तो थी नकली दलील, नीज अकली दलील भी है। अकली दलील ये कि जब शहादत के अंदर चार की शर्त लगाई गई है, आम मामलात से बढ़कर गवाहों की शर्त लगाई गई है, तो इसी तरह इकरार में भी आम इकरार से बढ़कर इकरार शर्त होगा, मामले की अहमियत की वजह से कि जिना का मामला बड़ा अहम और बड़ा नाजुक है। भाई तो यह माना है वली अन्न शहादत तख्तुसत फी ही बिजियादत इल आददी, और नीज इसलिए क्योंकि जिना के मामले में शहादत खास है आदद की ज्यादती के साथ, यानी चार गवाह हैं। फकदल इकरारू, तो इसी तरह इकरार भी होगा। ए अज़ामन लि अम्रि जिना, जिना के मामले के अहम होने की वजह से, यही तर्जमा कर लें, इअज़ामन लि अम्रि जिना, जिना के मामले के संगीन होने की वजह से, व तहकीकन लि माना सत्री, और छुपाने के माना को साबित करने के लिए चार गवाह होंगे। चार गवाहों की शर्त क्यों लगाई गई, उसमें हिकमत क्या थी, ताकि बात छुप जाए, क्योंकि चार गवाह तो हर जगह नहीं हो सकते। तो इसी तरह इकरार में भी चार मर्तबा की शर्त लगाई गई ताकि बात को छुपा लिया जाए। भाई एक दफा इकरार से अगर हद आ जाए फिर तो बात ना छुपी, तो तीन दफा तक कोशिश की जाएगी और चौथी मर्तबा में फिर हद साबित हो जाएगी। आगे देखिए, वला बुद्ध मिन इख्तिलाफिल मजलिसी लिमा रवैना, अब चार मजलिसें क्यों होनी चाहिए, अब उसकी वजह जिक्र कर रहे हैं। कहते हैं वला बुद्ध मिन इख्तिलाफिल मजालिसी, और मजलिसों का इख्तिलाफ भी जरूरी है, लिमा रवैना, उस हदीस की वजह से जो हमने रिवायत कर दी। ये जो अभी माइज रजी अल्लाह तआला अन्हु की हदीस आई कि हुजूर ने जब तक उसके चार इकरार पूरे न हुए वो हद जारी नहीं फरमाई। तो कहते हैं वला बुद्ध मिन इख्तिलाफिल मजाल इसी लिमा रवैना, और जरूरी है मजलिसों का मुख्तलिफ होना उस हदीस की वजह से जो हमने रिवायत कर दी। वली अन्न इत्तेहादिल मजलिस असरन फी जमइल मुतफर्रिकाती, और नीज इसलिए क्योंकि मजलिस के एक होने में, मजलिस के एक होना जो है असरन, उसका असर होता है फी जमइल मुतफर्रिकाती, मुतफर्रिक चीजों को जमा करने में, मजलिस का असर होता है मुतफर्रिक चीजों को जमा करने में। मजलिस एक है, आप आयत सजदा 10 दफा पढ़ लें आप पर एक ही सजदा वाजिब होगा। मालूम हुआ मजलिस एक हो तो यह मुतफर्रिक चीजों को जमा कर देती है। तो यह माना है वली अन्न इत्तेहादिल मजलिस असरन फी जमइल मुतफर्रिकाती, और इसलिए क्योंकि मजलिस का एक होना इसका असर होता है मुतफर्रिक चीजों को जमा करने में। फइंदहु यतहक्कु शुबहतुल इत्तेहाद फिल इकरारी, फइंदहु ऐ इंद इत्तेहादिल मजलिस, तो जिस वक्त मजलिस मुत्तहिद होगी यानी एक ही होगी, यतहक्कु तो फिर पाया जाएगा शुबहतुल इत्तेहादी, एक होने का शुबा फिल इकरारी, इकरार में। अगर एक ही मजलिस में वो चार इकरार करता है तो उनमें तो इत्तेहाद का शुबा आ जाएगा, ये तो गोया एक ही इकरार है सारा, और शुबे की वजह से तो हद साकित हो जाया करती है। तो लिहाजा यहां चार अलग अलग मजलिसों में उसका इकरार करना जरूरी है। ये माना है फाइंदहु, तो जिस वक्त मजलिस एक होगी तो यह तहक्कु शुबहतुल इत्तेहाद फिल इकरारी, तो इकरार में एक होने का शुबा पाया जाएगा। वल इकरारु काइमुन बिल मुकिर्री, अब वजह जिक्र करने लगे हैं कि इकरार करने वाले की चार मजलिसों का एतबार क्यों है, काजी की चार मजलिसों का क्यों नहीं एतबार। कहते हैं वल इकरारु काइमुन बिल मुकिर्री, और इकरार जो है वो तो मुकिर के साथ कायम है, इकरार तो मुकिर की सिफत है इकरार करने वाले की, तो उसी की चार मजलिसों का एतबार है। तो कहते हैं वल इकरारु काइमुन बिल मुकिर्री, और इकरार जो है वो इकरार करने वाले के साथ कायम है। फयुअतबरु इख्तिलाफु मजलिसिही दून मजलिसिल काजी, तो उसी की मजलिस के मुख्तलिफ होने का एतबार है न कि काजी की मजलिस के। फल इख्तिलाफु बि अन यरुद्दहुल काजी कुल्लमा अकर्रा, तो इख्तिलाफ मजलिस वो ये है बि अन यरुद्दहुल काजी, कि काजी उसको लौटा दे कुल्लमा अकर्रा, जब भी वो इकरार करे। फयज़हबु हैसु ला यराहु, तो वो चला जाए ऐसी जगह के काजी उसको न देख सके, यानी मजलिस से निकल गया बाहर चला गया। फयज़हबु हैसु ला यराहु, तो वो ऐसी जगह चला जाए कि काजी उसको न देख सके। सुम्म यजीउ, फिर आ जाए। फयुकिर्रु, फिर इकरार करे। हुवल मरवी युअन अबी हनीफा रहमहुल्लाह, यही रिवायत है इमाम साहेब से, यानी उसी मजलिस में बैठे एक तरफ से उठ के दूसरी तरफ आ जाए, यह मुराद नहीं है, बल्कि बाहर निकल जाए यहां तक कि काजी की नजरों से छुप जाए और फिर दोबारा आ जाए। तो कहते हैं हुवल मरवी युअन अबी हनीफा तरहमल्ला, और यही रिवायत किया गया है इमाम साहेब से। लिअन्नहु अलैहि सलातु वस्सलामु तारादा माइजन, तारादा या तुरुदू का माना है हटाना, दूर करना, इमाम साहब फरमाते हैं लिअन्नहु अलैहि सलाम उत्तरादा माइजन, कि हुजूर अलैहि सलाम ने हजरत माइज रजी अल्लाह तआला अन्हु को दूर कर दिया, फी कुल्ली मर्रतिन हर मर्तबा में, हत्ता तवारा बिहीतानिल मदीनती, यहां तक कि वह मदीने की दीवारों में छुप गए। हीतान जमा है हाइत की, दीवार को कहते हैं, और तवारा या तवारा का माना छुप जाना। हज़रत माइज रजी अल्लाह ताला अन्हु ने जब भी इकरार किया, हुजूर अलैहि सलाम ने उनको उनको दूर हटा दिया, उनको दूर कर दिया, यहां तक कि वो मदीने की दीवारों में छुप गए, यानी बाहर निकल गए। तो कहते हैं लिया नहु अलैहि सलाम उतरदा माइजन फी कुल्ली मर्रतिन, क्योंकि हुजूर अलैहि सलाम ने हज़रत माइज रजी अल्लाह ताला अन्हु को दूर कर दिया हर मर्तबा, हत्ता तवारा बिहीतानिल मदीनती, यहां तक कि वो छुप गए मदीना की दीवारों में। आगे देखिए काला, भाई इस काला से मुराद साहिब कुदूरी हैं। काला साहिब कुदूरी फरमाते हैं फैदा तम इकरार हु अरबा मर्रातिन, जब उसका इकरार चार मरतबा पूरा हो जाए, सअलहु अनि ज़िना, तो काजी उससे जिना के बारे में पूछे। अब वो काजी सवालात करेगा, जब चार मरतबा इकरार पूरा हो गया उसके बाद काजी ये सवालात करेगा। पहली तीन मरतबा में तो काजी डांट कर उसको दूर कर देगा भाई। तो कहते हैं फैदा तम मैं इकरार हूं अरबा मर्रातिन, जब इसका इकरार चार मर्तबा पूरा हो जाए, सअलहु अनि ज़िना, तो काजी उससे जिना के बारे में पूछेगा कि मा हुआ, कि जिना क्या होता है, वह कैफ हुआ, और वो कैसे किया जाता है, वह अईना जना, और कहां इसने जिना किया है, वह बिमन जना, और किस औरत से जिना किया है। फईदा बयाना ज़ालिका लज़िमहुल हद, तो जब वो ये बयान कर दे तो उस पर हद लाजिम हो गई, ली तमामिल हुज्जती, हुज्जत के पूरा हो जाने की वजह से, कि हुज्जत पूरी हो गई, अब हद लाजिम हो गई। तो साहिब कुदूरी ने जिक्र किया कि काजी ये सवाल करेगा, लेकिन मता जना इसको जिक्र नहीं किया कि कब जीना किया था, यानी जमाने के बारे में नहीं पूछेगा। तो कहते हैं वमानस सुआली अनहादिहिल अशियाई, वमानस सुआली, मैंने बतलाया माना का लफ्ज इल्लत और सबब के माना में आम इस्तेमाल होता है फिका की किताबों में। कहते हैं वमानस सुआली अनहादिहिल अशियाई, और इन चीजों के बारे में सवाल जो है उसका सबब जो है, बयन्ना हुफी शहादती, उसको हमने शहादत में बयान कर दिया, पिछले सफे पर हमने उसको बयान कर दिया। वलम यस्कुरी सुआल फी ही अनि जमानी, और इस इकरार के अंदर साहिब कुदूरी ने जमाने के सवाल को जिक्र नहीं किया। वज़करहु फी शहादती, और शहादत के मसले में जमाने के सवाल को जिक्र किया। लिअन्न तक़ादुम अल-अहद यमनउ शहादता, इसलिए क्योंकि जमाने का पुराना होना यह शहादत को तो मना करता है, दून अल इकरार, इकरार को मना नहीं करता। वकील, और कहा गया है लौ सअलहु जाज़ा, कि अगर काजी इससे भी जमाने के बारे में पूछ ले तो यह जायज है। लिजवाजी अन्नहु जाना फी सिबाहु, सिबा स्वाद के साथ है, बचपने को कहते हैं। तो कहा गया है कि अगर काजी इस इकरार करने वाले से भी जमाने के बारे में पूछ ले तो यह जायज है। लिजवाजी अन्नहु जाना फी सिबाहु, इसलिए क्योंकि मुमकिन है इसने बचपन में जिना किया हो, और बचपन में जिना किया हो फिर तो हद साबित नहीं होती। आगे देखिए फइन रजा अल मुकिर्रु अन इकरारिही क़ब्ल इक़ामतिल हद्द औ फी वसतिही क़ुबिला रुजूउहु वखुल्लिया सबीलुहु, याद रखो जब जिना इकरार से साबित हुआ है और काजी ने फैसला कर दिया इस पर हद जारी कर दी जाए, और फिर हद कायम होने से पहले इसने रुजू कर लिया, या हद के दौरान बीच में इसने रुजू कर लिया, तो इस सूरत में भी इसके रुजू को कबूल किया जाएगा और इसको जाने देंगे जी। काजी ने फैसला कर दिया हद का और हद अभी इस पर लगाई नहीं गई, उससे पहले ही इसने रुजू कर लिया, तब भी इसको छोड़ देंगे, या इस पर हद लगाना शुरू कर दी गई, मसलन कोड़े लगा रहे हैं और इसने दरमियान में रुजू कर लिया, तो भी इसके रुजू को कबूल किया जाएगा और इसे छोड़ देंगे। तो कहते हैं फइन रजअ अल मुकिर्रु अन इकरारिही, और अगर इकरार करने वाले ने अपने इकरार से रुजू कर लिया, क़ब्ल इक़ामतिल हद, हद कायम करने से पहले, औ फी वसतिही, या हद के बीच में, क़ुबिला रुजूहु, तो उसके रुजू को कबूल किया जाएगा, वखुल्लिया सबीलुहु, और उसके रास्ते को खाली कर दिया जाएगा। रास्ते को खाली करना मुराद है छोड़ देना, وَخُلْ لِيَسَبِيلُهُ اور اس کے راستے کو خالی کر دیا جائے گا یعنی اسے چھوڑ دیا جائے گا. وَقَالَ شَافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ اور امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَهُوَ قَوْلُ بْنِ أَبِي لَيْلَى اور یہی قول ہے ابن ابی لیلہ کا. ابن ابی لیلہ بھئی یہ بھی بہت بڑے فقیہ گزرے ہیں اور قدیم فقہا میں سے ہیں بھئی. ان کی وفات ہوئی ہے 148 ہجری میں, پیدائش ہوئی ہے 76 ہجری میں اور وفات ہوئی ہے 148 ہجری میں. یہ بھی کبار فقہا میں سے تھے بھئی اور یہ تابعی ہیں بھئی, تابعی ہیں. یہ بھی کوفہ کے رہنے والے تھے اور یہ 30 سال سے زائد تک کوفہ کے قاضی رہے بھئی. تو ان کا اور امام شافعی رحمہ اللہ کا یہ قول ہے کہ اس کے رجوع کو قبول نہیں کیا جائے گا. ایک دفعہ حد کا فیصلہ ہو گیا, اب یہ رجوع کر لے تو رجوع سے اب کوئی اثر نہیں پڑے گا, اب حد قائم کی جائے گی. تو کہتے ہیں وقال الشافعی رحمہ اللہ اور امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں وہو قول ابن ابی لیلہ اور یہی قول ہے ابن ابی لیلہ کا یقیم علیہ الحد کہ قاضی اس پر حد قائم کرے گا, یعنی رجوع کے باوجود قاضی اس پر حد قائم کرے گا. لأنه وجب الحد بإقراره اس لیے کیونکہ حد واجب ہو چکی ہے اس کے اقرار کی وجہ سے. فلا يبطل برجوعه وإنكاره تو اس کے رجوع کرنے اور انکار کرنے سے اب وہ حد اب باطل نہیں ہو سکتی. كما إذا وجب بالشهادت جیسے کہ حد جب شہادت کی وجہ سے واجب ہو, بھئی جیسے گواہوں کی وجہ سے جب حد ثابت ہو جائے تو وہاں پر اگر وہ انکار کرتا ہے تو اس کے انکار کو نہیں دیکھا جاتا, تو یہاں پر بھی اس کے اقرار کی وجہ سے جب ایک دفعہ حد ثابت ہو گئی ہے تو اب اس کے انکار کو یا رجوع کو نہیں دیکھا جائے گا. تو کہتے ہیں کما اذا وجب بشہادتی جیسے کہ حد جب گواہی کی وجہ سے ثابت ہو جائے تو اس کے انکار کو نہیں دیکھا جاتا. وصار القصاص وحد القذف اور یہ قصاص اور حد قذف کی طرف ہو گیا. یاد رکھو قصاص اگر اقرار سے ثابت ہوا ہے, ایک آدمی نے اقرار کر لیا کہ میں نے زید کو قتل کیا تھا اور قاضی نے قصاص کا حکم دے دیا, اب بعد میں یہ قاتل انکار کرتا ہے رجوع کرتا ہے تو اس صورت میں اس قاتل کے انکار کو نہیں دیکھا جائے گا. یا اسی طرح کسی پر حد قذف ثابت ہو گئی, کسی نے اقرار کیا کہ میں نے فلاں پر زنا کی تہمت لگائی تھی اور اس پر حد قذف ثابت ہو گئی بھائی, قاضی نے فیصلہ کر دیا, اب بعد میں یہ رجوع کر لیتا ہے تو یہاں اس کے رجوع کی طرف نہیں دیکھا جائے گا بلکہ اس پر حد قذف جاری کی جائے گی. تو معلوم ہوا قصاص اور حد قذف یہ اقرار سے ثابت ہو جائیں اور یہ بعد میں رجوع بھی کر لے تو اس کے رجوع اور انکار کو نہیں دیکھا جاتا. تو اسی طرح حد زنا بھی ہے, وہاں بھی ایک دفعہ اقرار کے بعد جب رجوع کر رہا ہے تو اس کے رجوع کو نہیں دیکھا جائے گا, جیسے قصاص اور حد قذف میں اس کے انکار کو نہیں دیکھا جاتا. تو کہتے ہیں وَصَارَكَ الْقِصَاصِ وَحَدِّ الْقَذْفِ اور یہ حد زنا جو ہے قصاص کی طرح اور حد قذف کی طرح ہو گئی. وَلَنَا ہماری دلیل یہ ہے کہ ان الرجوع ہم کہتے ہیں کہ اس نے جو اقرار کیا تھا وہ بھی خبر تھی اور یہ جو رجوع کر رہا ہے یہ بھی خبر ہے. ایک طرف وہ کہہ رہا ہے میں نے یہ کام کیا ہے, دوسری طرف اب وہ کہہ رہا ہے میں نے نہیں کیا, تو شبہ آ گیا. جب شبہ آ گیا تو حد تو شبہ کی وجہ سے ساقط ہو جاتی ہے. اور باقی آپ نے اس کو قیاس کیا تھا قصاص پر اور آپ نے اس کو قیاس کیا تھا حد قذف پر کہ وہاں وہ رجوع کر بھی لے پھر بھی وہ قصاص یا حد قذف جاری کی جائے گی. تو ہم کہتے ہیں وہاں دراصل اس کو جھٹلانے والے موجود ہوتے ہیں, وہاں جھٹلانے والے موجود ہوتے ہیں. یہ حد زنا جو ہے یہ حق اللہ ہے, یہ خالص اللہ کا حق ہے. اور جبکہ قصاص وہاں تو مقتول کے اولیاء بھی موجود ہیں, وہ حق العبد ہے. اور حد قذف وہاں پر بھی جن پر تہمت لگائی تھی وہ بھی موجود ہیں. تو قصاص میں اور حد قذف میں یہ رجوع کر رہا ہے, پہلے اقرار کر لیا تھا اب کہتا ہے نہیں میں نے ایسا نہیں کیا, تو یہاں دوسرے لوگ اس کو جھٹلانے والے موجود ہیں, وہ جو فریق مخالف ہیں وہ اس کو جھٹلا رہے ہیں, تو جھٹلانے والے موجود ہیں اس لیے اس کے رجوع کو قبول نہیں کیا جائے گا. جبکہ زنا کے مسئلے میں جب یہ رجوع کر رہا ہے اس کو جھٹلانے والا کوئی موجود نہیں, کیونکہ حد زنا تو خالص اللہ کا حق ہے بھائی. ولنا ہماری دلیل یہ ہے کہ ان الرجوع خبر محتمل للصدق قل اقراری کہ رجوع جو ہے وہ بھی ایسی خبر ہے جو سچ کا احتمال رکھتی ہے قل اقراری جیسے کہ اقرار ہے ولیس احد یکذبہ فیہ اور اس کے اندر کوئی ایک شخص بھی نہیں ہے جو اس کو جھٹلا رہا ہو اس رجوع میں کوئی آدمی نہیں ہے جو اس کو جھٹلا رہا ہو فیتحقق الشبہۃ فی الاقرار تو اقرار کے اندر شبہ ثابت ہو جاتا ہے بخلاف ما فیہ حق العبد بخلاف وہ چیز جو بندے کا حق ہے وہ هو القصاص وحد القذف اور وہ قصاص ہے اور حد قذف ہے لوجود من یکذبہ بوجہ پائے جانے اس شخص کے جو اس کو جھٹلا رہا ہے کہ وہاں فریق مخالف موجود ہیں جو اس کے رجوع کو جھٹلا رہے ہیں تو کہتے ہیں لوجود من یکذبہ بوجہ پائے جانے کہ اس شخص کے جو اس کو جھٹلا رہا ہے ولا کذالک ما ہوا خالص حق شرعی اور وہ چیز جو خالص شریعت کا حق ہے وہ ایسی نہیں ہے یعنی حد زنا ایسی نہیں ہے بھائی آگے دیکھیے ویستحب للامام ان یلقن المقر الرجوع اچھا بھائی اقرار کرنے والے نے چار دفعہ اقرار کر لیا چار دفعہ اقرار کر لیا اب قاضی اس سے وہ سوال وغیرہ بھی پوچھتا ہے پھر بھی کہتے ہیں مستحب یہ ہے قاضی اس کو تلقین کرے کہ رجوع کر لو اور چار دفعہ اقرار کے بعد بھی رجوع کرے گا ہمارے نزدیک وہ رجوع معتبر ہے بھائی تو لہذا چار دفعہ اقرار کر لیا ہے پھر بھی مستحب ہے کہ قاضی اس کو رجوع کی تلقین کرے اور کہے بھائی تم نے زنا نہیں کیا ہوگا تم نے صرف اس کو چھوا ہوگا ہاتھ لگایا ہوگا یا صرف تم نے بوسا لیا ہوگا بات سمجھ میں آ گئے تو کہتے ہیں وَيُسْتَحَبُّ لِلْإِمَامِ أَن يُلَقِّنَ الْمُقِرَّ الرُّجُوعَ اور امام کے لیے مستحب ہے کہ وہ اقرار کرنے والے کو تلقین کرے رجوع کرنے کی فَيَقُولَ لَهُ تو اس سے کہے لَعَلَّكَ لَمَسْتَ أَوْ قَبَّلْتَ شاید تم نے ہاتھ لگایا ہوگا یا بوسا لیا ہوگا لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لِمَاعِزٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ بوجہ حضور علیہ السلام کے فرمان مبارک سے جو آپ نے حضرت ماعز رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ لعلک لمستہا او قبلتہا کہ شاید تم نے ہاتھ لگایا ہوگا یا بوسا لیا ہوگا وقال فی الاصل اصل سے مراد ہے یہاں مبسوط بھائی وقال فی الاصل اور امام محمد رحم اللہ مبسوط میں فرماتے ہیں وینبغی ان یقول له الامام اور مناسب ہے امام کے لیے کہ وہ یوں کہے لعلک تزوجتہا او وطئتہا بشبہتن قاضی اس کو تلقین کرے رجوع کی کس طریقے پر یوں کہے بھئی شاید تم نے اسے نکاح کیا ہوگا زنا نہیں کیا ہوگا بلکہ نکاح کیا ہوگا یا شاید تم نے شبہ میں وطی کی ہوگی تو اس طرح قاضی اس کو تلقین کرے رجوع کی تو کہتے ہیں وقال فی الاصل اور امام محمد رحمہ اللہ مبسوط میں فرماتے ہیں وینبغی ان یقول له الامام اور مناسب یہ ہے کہ امام اس سے کہے لعلک تزوجتہا کہ شاید تم نے اسے نکاح کیا ہوگا او وطئتہا بشبہتین یا تم نے اس عورت سے شبہ میں وطی کی ہوگی وہذا قریب من الاول فی المعنی صاحب ہدایہ فرماتے ہیں متن میں تو آیا کہ یوں کہے لعلک لمست او قبلت متن میں تو یہ آیا اور مبسوط میں امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یوں کہے لعلک تزوجتہا او وطئتہا بشبہتین تو یہ تو دونوں الفاظ مختلف ہیں دونوں جگہ تو صاحب ہدایہ بتلا رہے ہیں کہ یہ بھی اس پہلی بات کے قریب ہی ہے یعنی دونوں کا معنی اور مقصود ایک ہی ہے کہ وہ رجوع کی تلقین کر رہے ہیں بھائی تو کہتے ہیں وَهَذَا قَرِيبٌ مِّنَ الْأَوَّلِ اور یہ والا قول بھی پہلے قول کے قریب ہی ہے فِي الْمَعْنَى معنی کے اعتبار سے ان اس میں بھی رجوع کی تلقین ہی ہے جیسے پہلے قول کے اندر جو متن میں آیا اس میں رجوع کی تلقین ہے بھائی بات سمجھ میں آ گئی حل ہو گیا چلیے بس بھائی هَذَا هُوَ الْمَرَامُ وَاللَّهُ عَلَمْ بِحَقِيقَةِ الْكَلَامِ